कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहेब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्य आत्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा की तलाश में ये आत्मा उसी दिन से लग गई जिस दिन से ये उससे बिछुड़कर यहां काल के लोक में आई थी, क्योंकि इसको जो सुख सतलोक के अंदर था वो सुख यहां नहीं मिला। और इस काल भगवान ने हमारे को इतना ज्ञानी बना दिया, उस परमेश्वर का नामो निशान मिटा दिया। और अपनी काल की महिमा और अपने पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा यह पूरे विश्व में फैला दी और इतना अज्ञान भर दिया कि आज तक किसी को ये नहीं मालूम था कि परमात्मा है कैसा। सभी परमात्मा को निराकार बताया करते थे और सभी ये भी कहते थे कि सदग्रंथ जो हमारे हैं प्रत्येक पवित्र धर्म के वो बहुत ही सत्य ज्ञान युक्त हैं। पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र पुराण, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये जितने भी सदग्रंथ थे ये सभी हमारे लिए मान्य हैं। और इनमें ये भी हमारा मानना है और हमें ये ज्ञान था कि इनके अंदर जो लिखा वो सत्य है। और फिर हम इससे हटकर जो ज्ञान सुन रखा था वो अज्ञान था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अदर अमर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती है, यही सबके सृजनहार हैं, सारी सृष्टि के रचनहार यही हैं और इन्हीं की भक्ति से जीव कल्याण होगा। ये हमने ज्ञान सुन रखा था। और दूसरा, प्रत्येक धर्म के प्रत्येक धर्मी ये कहा करते थे कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई साकार बॉडी नहीं है, वो बॉडी लेस है। तो ये ज्ञान जो हम सुन रखा था ये उन्हीं सदग्रंथों की दुहाई दे करके, गवाही दे करके हमें बताया गया था, जिन सदग्रंथों को आज हम अपनी आंखों पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जांच रहे हैं, उनमें क्या लिखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सर्वेश्वर नहीं है, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं हो सकता। और परमेश्वर ने स्वयं आकर के, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। क कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा और जिला बागपुर उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा इस कलयुग के अंदर आकर सीधे मिले और इस दास को मिले, तो उन महापुरुषों को तो हम मानते ही हैं कि वो महापुरुष थे, उन्होंने जो कुछ भी अपनी अमृतवाणी में लिखा है वो सत्य है। तो उन्होंने जो परमेश्वर की जानकारी दी है वो, और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं और वो, और परमेश्वर ने स्वयं आकर जो ज्ञान बताया, वो तीनों मिलकर जब हमें एक ही राय दे रहे हैं कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, तो वो सब सदग्रंथों में विद्यमान है, सब महापुरुष जिनको परमात्मा मिला उनके अमृत वाणी में विद्यमान है, और स्वयं परमेश्वर ने आके बताया हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। तो जो हम सुना करते वो लोक वेद था, लोक वेद मीन दंत कथा, यथार्थ ज्ञान ना होकर के एक परंपरागत सुना सुनाया ज्ञान आगे बढ़ रहा हो उसको लोक वेद कहते हैं, और उसी के आधार से हम पूजाएं कर रहे थे, लोक वेद के आधार से हम सदग्रंथों के आधार से भक्ति नहीं कर रहे थे, जिस कारण से आज मानव शरीर को इतनी हानि होगी कि हमारे पूर्वज प्रेत बन गए, उनके फिर पिंड भरवाए जाते हैं, श्राद्ध निकाले जाते हैं, हम यहां पिंड और श्राद्ध के काम लगे हैं, वो मनमाना कहीं पशु बनकर घूम रहे होंगे। तो ये जो सारा कारण रहा आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित जो व्यक्ति थे वो गुरु पद पर विराजमान हो गए, वो केवल एक भाषा जानते थे संस्कृत, और जिस कारण से हमें कोई शंका उत्पन्न नहीं हुई कि इन्होंने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि सब सदग्रंथ जो पुरातन ग्रंथ हैं वो सारे के सारे संस्कृत भाषा में विद्यमान हैं, अब तो हिंदी अनुवाद हो गया, और यही कारण रहा कि हम आज तक भगवान से दूर रहे और अपना बहुत से मनुष्य जीवन हमने बर्बाद कर दिए, परमात्मा की भक्ति में रुचि नहीं रही। अब तो भक्ति और आस्था अंतिम सांस गिने थी, कुछ ही वर्षों के बाद इस पृथ्वी पर कोई परमात्मा कहने वाला व्यक्ति नहीं रहे, इन नकली संतों ने, इन नकली पंथों ने, और यथार्थ भक्ति ना मिलने से मानव को कोई लाभ हुआ नहीं, परमात्मा के लिए भटक रहे हैं, अंत में उनका कुछ वहां से राहत मिल नहीं रही, तो सभी ने दूसरा तरीका अपना लिया, लगभग टेंशन परमात्मा से दूर होती है जब कर्म संस्कार बुरा खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म होगी, तो किसी प्रकार की है, रोग की है या अन्य कोई और कहानी है, कोई कारण है या कर्ज है, तो जब तक वो परमात्मा मिलेगा नहीं तो वो कर्म नहीं कटे, समर्थ भगवान नहीं मिलेगा तो कर्म नहीं कटेगा, पाप कर्म कटेगा नहीं, और पाप कर्म कटेगा नहीं तो टेंशन समाप्त नहीं हो सकती। तो वो ना साधना मिली, ना भगवान मिला हमारे को, ना कोई सा संत मिला कि उस ज्ञान को बतावे और हमारे इन पापों का नाश करावे। और जो महापुरुष जिस समय वो महापुरुष हुए हैं, जिनको भगवान मिले, उन्होंने यही ज्ञान बताया जो दास आपको आज बता रहा है, और परमेश्वर ने यही ज्ञान बताया लेकिन उस समय हम नहीं समझे उन महापुरुषों की वाणी को, उनके ज्ञान को, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। परमात्मा आपको शिक्षित करना नहीं चाहता था, सतयुग से लेकर और कलयुग के 50 वर्ष से पहले तक आज से कोई शिक्षित नहीं था, क्योंकि इस शिक्षा ने हमें अभिमानी और बेईमान बना दिया। हम अपने टेंशन समाप्त करने के लिए तो भगवान से दरार मिली नहीं, तो हमने किसी ने तो शराब पीनी शुरू कर दी, किसी ने धनी बनने के लिए रिश्वत लेनी शुरू कर दी, ये दूना पाप इकट्ठा कर लिया। तो जिस कारण से परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाना पड़ा, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था आप तक अपना संदेश भगवान पहुंचा सके। ऐसी विज्ञान मालिक ने दी है ना, ये मनुष्य यही था 43,20,000 वर्ष से 4 युगों में, और 3 युग डालिए लगभग 40,39,000 वर्ष जा चुके एक चतुर्युगी के। तो अभी तक हम शिक्षित नहीं हुए, क्योंकि परमात्मा नहीं बनाना चाहता था आपको बेईमान, अहंकारी, अभिमानी, और ना उससे पहले कोई इसी विज्ञान बना सका जो आज बन रहे हैं। कंप्यूटर हैं, इंटरनेट सिस्टम बना दिया, मोबाइल बनवा दिया अपने बच्चों के लिए। अब ये 10 वर्ष से उरे उरे डूडा ठाया परमात्मा ने, ये गॉड गिवन बुद्धि है या किसी मनुष्यतर की खोज नहीं है। और परमात्मा ने इसलिए दिया कि सब बच्चे मेरे इस ज्ञान को रह रहकर देखेंगे, प्रमाणों को मिलाएंगे, और फिर चलते फिरते काम करते करते मेरी महिमा सुना करेंगे। क्योंकि हम ब्यूजी घने हो गए, बहुत हम व्यस्त हो गए, काम थोड़ा, काम तो बहुत कम हो गया क्योंकि मशीन से सब काम हो रहा है, और फिर भी हम व्यस्त इतने हैं, समय नहीं किसी के पास भगवान की दोगड़ी भक्ति करने का। इस विज्ञान ने चक्कर काट दिया, इस माया की हवस बढ़ गई हमारे अंदर, तो इस ज्ञान से इस माया के जोड़ने की हवस कम होगी और भक्ति की हवस जागेगी, और तब ये आत्मा परमात्मा की भक्ति में दृढ़ता से लगेगी। तो उसके लिए भगवान ने ये समय सेलेक्ट किया, और वो सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति, यथार्थ भक्ति विधि आज इस दास को उपलब्ध कराई। और साथ के साथ अभी सन 1994 में दास को आदेश हुआ था दीक्षा देने का, अब उसके तुरंत बाद ही 5-7 वर्षों के बाद ही ये टीवी चैनल बन गए और इनकी बाढ़ सी आ गई। तो काल ने अपना दाव खेला कि इन सभी टीवी चैनलों पर अपने दूतों से नकली ज्ञान प्रचार करना शुरू करवा दिया। और फिर जब हमारा नंबर आया सन 2003 में, हमने कोशिश की थी आस्था चैनल पर, 3-4 महीने चला था। यदि उस समय ये ज्ञान 6 महीने और चल जाता, सारी उथल पुथल हो जाती, सारा विश्व जाग जाता, तो इन नकली संतों को, इन नकली आचार्यों और शंकराचार्यों को चिंता बन गई कि अगर ये ज्ञान जनता तक पहुंच गया तुम्हारी छुट्टी। ये तो इससे सिद्ध है कि ये लोग भगवान नहीं चाहते, न कल्याण चाहते किसी का, केवल स्वार्थ चाहते थे। तो वो एकदम हमारा बंद करवा दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद ऐसा कांड करवाया, क्रोथा कांड, झूठ बोल के झूठा बदनाम किया, रामपाल निंदा करता है, वह ऐसा होता है वैसा होता है। उनका उद्देश्य यह था कि इसको मिटा दे और तुम्हारी पोल ना पाट जाए और जनता का कल्याण ना हो जाए, उनका उद्देश्य यही है। लेकिन उस परमात्मा का वचन है कि ये ज्ञान पूरे विश्व में जावेगा, सारा संसार भक्ति करेगा, परमात्मा के बच्चे हैं, जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो भी भगवान के ही बच्चे हैं, वो परमात्मा के बच्चे हैं। लेकिन इस काल उनका दुरुपयोग कर रहा है, उनके कर्म बिगाड़ रहा है, तो परमात्मा ने दया करी है, देखो पहले से भी हजार गुना बढ़ गया हमारी संगत भी, हमारा प्रचार भी। तो ये परमात्मा का चलाया मार्ग है, उसके एक वचन से सारे ब्रह्मांड बन गए और अपने स्थान पर घूम रहे, इनको रोक के दिखाओ वैज्ञानिक। इसी प्रकार ये परमात्मा का वचन है, उसके वचन से ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा और दो दिन आगे पीछे सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन देख लिए परमात्मा ने अपने बच्चों को तड़फते भुगतते, तीन युग दे दिए काल को और कितना संतोष किया मालिक ने। किसी का बालक दुखी हो, माता पिता को चैन नहीं होती। अब उनको मालूम था ये दुखी हैं, सतयुग त्रेता द्वापर में भी दुखी थे, लेकिन इतने नहीं थे जितने कलयुग में हो गए। तो इस कलयुग में यहां तक आना था आपको लेकर के, और अब आपको वो ज्ञान देना है, अपनी शरण में पूरे विश्व को मालिक ने लेना है और आपका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। ये परमात्मा का वचन है। अब विश्व में कोई जीव सुखी नहीं आज के दिन, और जो साधना वो करते थे वो भी फेल हो ली, क्योंकि वो करते करते दुख आ गया आप पे, तो वो साधना ठीक नहीं। भगवान की भक्ति से दुखी व्यक्ति सुखी होता है, और करते करते दुख हो रहे, कैर टूट गए, तो वो भक्ति नहीं है, साधना नहीं है, और वो भगवान नहीं है जिसकी आप साधना करते थे। तो अब परमात्मा ने वो रजा बख्शी है कि यथार्थ ज्ञान इस दास को दिया है, और सन 1994 से लेकर आज तक लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। तो यही ज्ञान प्रारंभ से दास कहता आ रहा है, और सन 2000 के बाद सदग्रंथों को देखा है दास ने 2001 में। तो उस समय सदग्रंथों में देखा तो जो ज्ञान पहले दास बताता आ रहा था और जो मंत्र नाम पहले से दे रहा था वो इन सदग्रंथों में जोके तो मिले, तो और उमंग और खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि परमात्मा इन सदग्रंथों से अगर आपका ज्ञान मेल खा गया तो आपके बच्चे आपको पहचान सकेंगे। अन्यथा यदि हम ज्ञान सुनाते रहेंगे कबीर साहब की केवल वाणी लेकर के, या इन महापुरुषों की वाणी लेकर के, ये भगत आपको दृढ़ता से नहीं मान पाओगे। फिर ऐसा ज्ञान दिखाया दाता ने, सारे वेद गवा, सारे सदग्रंथ परमात्मा बता रहे हैं कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। कौन कबीर? वो धानक कबीर, जुलाहा कबीर, जो काशी के अंदर 120 वर्ष रहे, अपना ज्ञान प्रचार भी करते थे, सारे ब्रह्मंडों का संचालन उस झोंपड़ी में बैठकर करते थे और हमें ज्ञान भी देते थे। वो प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते ही करते। तो अब परमात्मा ने इस काल से कहा था, प्रथम सतयुग के अंदर जब परमेश्वर ने देखा कि सब जीव दुखी हो गए, हाहाकार मचा है, हम जब से इसके काल के लोक में आए हैं हम उस सुख को भूल नहीं पा रहे जो हम छोड़कर आए थे, लेकिन हमें वो पता नहीं वो है कहां। इसने इतनी भूल डाल दी कि वो है कहां, वो सुख हम यही खोज रहे हैं, इस नमक की बोरी में, इस नमक की मंडी में हम बूरा का टेस्ट खोज रहे हैं, और बूरा और नमक की एक जैसी शक्ल होती है, देखने में एक जैसा होता है, लेकिन उसके टेस्ट में दिन और रात का अंतर होता है। तो ये काल भी भगवान है यहां का, यहां की व्यवस्था हम देखते हैं जैसे दिन रात बन रहे हैं, शीतल हवा चल रही है, फलदार वृक्ष हैं, और जमीन में पानी बड़ा सुंदर जल है, मीठा है, ये सुविधाएं देखते हैं हम, तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल भगवान है जिसने हमारी इतनी चिंता है, कितने अच्छे फल फ्रूट दे रखे हैं, अपने आप उगे हैं ये। तो ये है नमक की बोरी का टेस्ट, यहां की जो सुख हमें दिखाई देते हैं। और जब हम सतलोक के उस व्यवस्था को देखेंगे, वहां के सब फल और उनके टेस्ट को देखेंगे तो ये नमक जैसा लगेगा हमारे को। तो ये सुख वहां है जिसको हम खोज रहे हैं। दूसरा सुख वहां क्या है? वहां जरा और मरण नहीं है। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण मीन मृत्यु। वहां जन्म और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु नहीं है। एक बार जन्म अवश्य होगा वहां जाकर के आपका, यानी जैसे यहां हुआ है ऐसे वहां भी होगा, और फिर आपका परिवार बनता चला जाएगा। अब जैसे कैसे अच्छे लगते हैं माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव, नाती, पोते, पोती, दोता, दोती, और कितने अच्छे लगते हैं, कितना प्यार है आपका। और फिर आप इनमें नहीं रह सकते, और ये भी कभी आपको छोड़ सकते हैं, काल का ना जाने कब किस पर अटैक हो जाए। फिर हम रोते हैं, टक्कर मारते हैं, इतनी प्यारी वस्तु फिर दोबारा देखने को नहीं मिलती, और फिर उनको रोते रोते हम भी मर जाते हैं कभी। तो ये जो दुख है ये आपको उसकी सतलोक के सुख को दृढ़ करेगा, और यहां से मन हटेगा। और इसका तरीका बताया है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों को, और नहीं तो कम से कम अपने पूरे परिवार को परमात्मा की भक्ति में लगा दो। यहां तो एक बार सबने जाना है, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो ना भी मानने वाली बात ना है कि हम नहीं मरेंगे। ये दूसरी बात है, भी नहीं मरेंगे पर कभी तो मरेंगे। तो ये स्थान अपना नहीं है। आज जिस संपत्ति को हम अपना मान रहे हैं, हमारी मृत्यु होगी तो दोबारा उसमें हिस्सा हमारा नहीं है। ना जाने कौन से कंट्री में जाकर हमारा जन्म होगा। तो ये यहां की वस्तु अपनी कोई नहीं है, ये अस्थाई, ये आपका सटे है, अस्थाई निवास है, और इसको आप स्थाई बनाने की कुचेष्टा करते करते युग बीत गए, असंख्य युग बीत गए। मरते हैं फिर सोचते हैं कोठी बनाएंगे, बंगले बनाएंगे, ठाट से रहेंगे, इतने मृत्यु हो जाती है। ये हमारी भूल ही है, बाकी फिर उसी स्पीड से लगे हुए। तो यहां से हटने के लिए इस ज्ञान को आश्रय बनाना पड़ेगा, अपने आधार बनाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर इस भक्ति करो। जब तक आप रहोगे भक्ति करोगे तो आपके जो प्रिय सदस्य हैं परिवार के, उनकी भी सुरक्षा भगवान करेगा। जब तक यहां रहोगे तब तक दुख दूर हुआ, और जाओगे जब आराम से जाओगे, भक्ति करने वाले की मृत्यु ऐसे होगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा। ऐसे जाओगे पट देसी, और आप बैठे पाओगे सतलोक में, परमात्मा के साथ घूम रहे होगे। एक भक्तिहीन प्राणी और दूसरी भक्ति करने वाला भुगत कर मरता है, तड़प कर मरता है, या कोई अचानक हार्ट अटैक होकर मर जाता है तो शोक में नहीं है, उसके यम के दूध दिखाई देते हैं, वो एकदम फट दे शरीर छोड़कर भाग जाता है, और उसको हार्ट अटैक कह देता है। गति दबंद होएगी जब जीव निकल गया उसके अंदर से, तो फिर उसकी दुर्गति और घड़ी होती है आगे चल के। लेकिन परमात्मा के भक्तों का वो संकट भी टलेगा, आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे, आपका परिवार यहां भी पीड़ा से बचेगा, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी और मर्यादा में रहना पड़ेगा। फिर आप सतलोक जाओगे, सब बच्चे भक्ति करने वाले धीरे धीरे सारे वहीं, क्योंकि वो ज्ञान ऐसा घर कर जाएगा प्रत्येक प्राणी के, बच्चे के, प्रत्येक सदस्य के, कि यहां तो अपना है ही नहीं। और एक ध्यान रखें, कोई प्राणी मर रहा हो सदस्य घर का, यानी शरीर छोड़ रहा हो भक्त, उसको याद दिलावे कि यहां संसार की इस किसी भी वस्तु में आस्था मत रखिए, नहीं तो लटक जाएगा फिर वापस। गुरुजी ने जो ज्ञान बताया है वहां सतलोक है, वहां सुरती लगा, आप भी चलो और हम भी आ रहे हैं, फिर हम कौन से सदा रहेंगे। तो उस समय उसका यहां से मन हटावे। अब पहले क्या करते थे, जब वो मरने लगता उसे पूछते तुझे कौन याद आता है, वो कभी कहता मुझे फलाना पोता याद आता, उसके दर्शन करा दो फिर मरूंगा। वो पोतन बुला लेते हैं, फिर वो मर जाता है, यानी वो आस्था फिर वहीं रहेगी, वापस वहीं आकर उस पोते का मन माने भैंस बनकर खड़ा हो जा या कुत्ता बनकर गली में आकर बैठ जाएगा उस पोते के, और पोता मारेगा सिर में लठ फिर। तो ये बात आपने याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आपका संस्कार है प्यार से रहो और इनको भी भगवान के बच्चे जानकर उनकी सेवा करो, अच्छा मार्गदर्शन करो, प्यार से रखो, बुराइयों से बचाओ और भक्ति पर लगाओ, ये आपका परम कर्तव्य बनता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि काल भगवान ने परमात्मा से एक वचन लिया था, परमात्मा ने जब देखा कि यहां जीव गणे दुखी हो गए, किसी की टांग कट रही है, किसी की मां मर गई, किसी का पिता मर गया, कोई किसी कष्ट से दुखी है, कोई किसी कष्ट से दुखी है, कोई गधा बन गया, कोई कुत्ता बना दिया, ये परमात्मा को आपकी जो पुकार वहां मालिक के चरणों में पहुंची, हाहाकार मची। अब जैसे हम भी जैसे श्री विष्णु जी के पुजारी था ये दास श्री कृष्ण राम का और हनुमान जी का, और फिर भी लास्ट में न्यू कहा करते हैं, कोई आपत्ति आ जाती, हे सच्चे भगवान, हे सच्चे मालिक, यानी इनसे हटकर वृत्ति कहीं और जाती थी सच्चे मालिक पर। हम उसको अब पता चला ये सत साहिब जिसे कहते हैं यही है वो सच्चा मालिक, यानी रियल गॉड, वास्तव में परमात्मा। अब पता चला वो सच्चा मालिक कौन है और वही सब दुख निवारण करने वाला है। तो उस सच्चे मालिक ने हमारी पुकार सुनी, तो परमात्मा प्रथम बार जब इस काल की सृष्टि में आए तब इस काल भगवान ने परमात्मा से विवाद किया था, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत के रूप में थे। तो उसने काल ने ये सोचा कि ये जोगजीत आया है तो परमात्मा का कोई संदेश लाया होगा, ये यहां का जो भगवान है परमेश्वर से बहुत डरता है, कबीर भगवान से, उस सच्चे मालिक से। जैसे गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है कि काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, और जोरा जोड़ी झाड़ता पग रद डारे शीश। तो ये उस परमात्मा से बहुत डरता है। अब उसको ये पता लगा कि जोगजीत मेरे लोक में आया है तो कोई बात विशेष है, तो उसने पहले कारण पूछा कि जोगजीत आपने मुझे वहां से निकाला था, आप सृष्टि रचना में पढ़ते हो, परमात्मा ने जोगजीत के रूप में आकर इसको वहां से 21 ब्रह्मांड सहित अपने सतलोक से निष्कासित किया था, तो इस कारण से उसने इस बात दुख हुआ कि तू मेरे लोक में क्यों आया, जब तूने अपने लोक से हमें भगा दिया था, अब तू मेरे लोक में कैसे आए, ये तो मैंने तप करके ले रखा, तेरा इसमें कोई रोल नहीं। इस चीज से बहुत दुखी हुआ वो कौन काल। फिर उसने सोचा कि कोई संदेश लाया होगा, पहले वो पूछ लेता हूं, फिर इसके साथ मैं युद्ध करूंगा, इसको पीटूंगा। तो परमात्मा जोगजीत रूप में खड़े थे, उन्होंने कहा कि सुन ले काल, परमात्मा का संदेश सुन ले तू, आपने ऐसा जुल्म कर दिया है, परमात्मा की आत्माओं का क्या हाल कर रखा है, हाहाकार मचा रखी, समय पर इनको टूक नहीं, और कैसे इनकी स्थिति कर रखी है, ना कोई इनकी सुरक्षा है, कोई किसी की माता मर गई, किसी का पिता मर रहा है, कोई पशु बना दिया, कोई कुत्ता बना रखा है, ये हालत भगवान से देखी नहीं गई, इसलिए मैं आया हूं और सुन ले उसका संदेश। मैं नीचे जाऊंगा सारे ब्रह्मंडों के अंदर और तेरी पोल खोलूंगा, तेरा पर्दा फांस करूंगा, तू भगवान नहीं है, ये काल है, ये तुम्हें खाने के लिए यहां रोके हुए हैं, और सारी तेरी कहानी बताऊंगा, परमात्मा की सच्ची कथा सुनाकर, सृष्टि रचना सुनाकर के उनको दृढ़ता फैलाऊंगा और सच्चा नाम मेरे पास है परमात्मा ने दिया है, वो नाम सुनाऊंगा। उसके भक्ति करके वो सीधे वापस वहां चले जाएंगे जहां से वो आए थे। अब इस बात को सुनकर उस ज्योत निरंजन काल के को बड़ा दुख हुआ और इतना गुस्सा आ गया कि इस जोग जीतने अभी खत्म कर दूं, नहीं हो तो मेरा नाश करेगा, उजाड़ देगा मेरे को। यदि नीचे के प्राणियों को परमात्मा का ज्ञान हो गया ये सब भाग जाएंगे और तू यहां अकेला रह जाएगा और तेरा बाग उजड़ जाएगा, तेरी खेती खत्म हो जाएगी। ये तो हमने खेती बना के पाल रहा है, सत्कर मान लियो आपको। ये कोई दास की अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। खुद परमात्मा ने आके बताया है कि तुम यहां जन्म मृत्यु में क्यों दुखी हो, कि इसको 100,000 मानव शरीरधारी प्राणी नत खाने पड़ते हैं और जिस कारण से यो आपको यहां पाले हुए हैं, जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, जिस दिन आपका यह भांग उतर जाएगी ना, इस यहां का नशा उतर जाएगा इस काल का, ये झूठे व्यवस्थाओं को आप देख करके भूले फिरते हो, कोई मंत्री बन गया, कोई महामंत्री बन गया और भटक रहे हैं सारा दिन इस खिलौनों से खेल कर जीवन नाश कर जाते। आज तो महामंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, सारी पृथ्वी का पति बन गया, अगले जन्म में क्या होगा, गधा बनेगा, वह कहां जाएगी त्रिप्रभुता। तो परमात्मा ने अपने बच्चों का अगला दुख दिखाई दे है और हमें ज्ञान हो गया, हमें भी इनका अगला नेक्स्ट कदम दिखाई देता है, कुएं में गिरेंगे जाते ही। तो हम चाहते हैं इनको इनके हाथ पकड़ लें, कुएं में ना गिरने दें, इनको सत भक्ति और सत ज्ञान बताकर यथार्थ भक्ति और यथार्थ कमाई या भक्ति की इधर रुचि पैदा करें। ये हमारा कर्तव्य बन गया भगवान के आदेश अनुसार। तो इस काल ने आपको ऐसे पाल रखा जैसे कसाई बकरे पालता है। अब आप देखते हो कसाई के बकरों को, बकरे और बकरी नर मादा दोनों इकट्ठे छोड़ देता है, एक बड़ा हतरागा बना देता है, खेत घास फूस झाड़ बोझड़ों वाला, और उसके चारों तरफ बाड़ लगा देता है, एक शेड बनाता है, एक झोंपड़ी उनके लिए गर्मी सर्दी से बचाने के लिए, और एक सरोवर बना देता है तालाब वहां पर उनके पानी पीने के लिए, वहां तरते हैं पानी पीते हैं, गर्मी सर्दी से बचने के लिए वृक्षों के नीचे या शेड के नीचे आ जाते हैं। और वो कसाई जब जाता है उन बकरों के पास तो ये समझते हैं, या कसाई के नौकर जाते हैं तो वो ये भोली प्राणी ये समझते हैं कि बड़े दयालु है सारे, हमारी कितनी केयर टेक करते हैं, कितनी देखभाल कर रहे हैं और कैसी सुविधा दे रखी है, तो वो बहुत नेक स्वामी नजर आते हैं। लेकिन जब उसको जरूरत पड़ती है कसाई को, वो निकलवा लेता है, 10 चाहिए 20 चाहिए उनमें, तो उसमें ना देखता किसी का बेटा आ रहा है, किसी की मां आ गई है, या पूरा परिवार ही क्यों ना आ गया हो, बेशक आ जाओ, कसाई किसे कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, जब कभी कभी वो कसाई या उसके नौकर जब उन बकरों में जाते हैं, बकरियों में, तो वो उनको अच्छा आदमी समझकर उनसे प्यार करते हैं, उनकी तरफ भाग कर जाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, ऊपर को पैर उठा के सीने से लगाना चाहते हैं और उसके हाथ को चाटते हैं। वो देख रहा है ऐसे हाथ लगा के, वो कसाई देख रहा है कि किसमें कितना मांस हो गया, कुणसे में कितना है, पहला किसकी टिकट काटूं, और वो चाटते हैं, स्वामी अच्छा मालिक मानकर उसे प्यार देते हैं। तो परमात्मा बताते हैं कि आप इन सुविधाओं को देखकर ये मान बैठे हो कि भगवान बड़ा दयालु है, और फिर कर तोल देता है, किसी का परिवार नष्ट हो गया, कि तो महामारी आ गई, कि तो फ्लड आ गया, कहीं रोग से, कहीं दुर्घटना से, हाहाकार मची है, या अन्य किसी बीमारी से, तो उस समय आपकी बुद्धि इतना काम नहीं करती, वो बिजली क्यों गिर गई इस परिवार पे। हम सोचते हम नहीं मरेंगे, हम ठीक ठाक हैं, उस दुर्घटना से पहले वो अभी ठीक ठाक मान रहे थे, तो यह भूल मिटेगी इस सत्संग से, क्योंकि ये सत्संग है और भगवान का दिया हुआ बताया हुआ ज्ञान है 100% सत्य है। हम व्यवस्था दूसरी में घने दिनों से रचे हुए हैं तो हमारे देर से बुद्धि में स्वीकार्य होती है कि ये ऐसे कैसे होगा, ये कैसे खाता है, शरीर तो यहां रह जाता है। जैसे आपने बादाम देखे होंगे, बादाम ऊपर का कवर खाने का नहीं होता, अंदर गिरी होती है। इसी प्रकार ये बॉडी जो ऊपर की है ये तो अंदर गिरी बनाने के लिए कवर है, यानी सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर। उसके अंदर हम सारे जीवन में जो खाते हैं पीते हैं और जो भी व्यसन करते हैं उन सब का अंश उस सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है। शेष तो बॉडी इस स्थूल शरीर के पालन पोषण में लग जाता है और कुछ उसके अंदर समा जाता है। जैसे आप देखते हो ओक्का बीड़ी और शराब, ये बुक्की और ये अफीम, ये खान की चीज है और सबसे ज्यादा सबके घर में पहुंच गई है। कलयुग में शायद ही कोई व्यक्ति बचा हो, व्यक्ति बचा है तो घर नहीं बचा है। तो ये क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ये मन है, इसने अपना एजेंट छोड़ रखा, काल का दूत है ये दूसरा रूप काल का समझो, और ये चाहता है कि ज्यादा टेस्ट ये खाए, हुक्का पाड़े, तमाखू पीवे, खावे, इसका उतना ही अंश उसमें जाएगा सूक्ष्म शरीर में। और फिर उनको भून कर एक तपतशिला बहुत बड़ी तई सी है पत्थर की, उस पर डाल देता है 1,00,000 प्राणियों को, सूक्ष्म शरीर को। ये स्थूल शरीर यहां रह जाता है, इसके हम अंतिम संस्कार में लगे रहते हैं, कभी इसका पेंड भरवाते हैं, कभी गंगा में डलवाते हैं, कभी तेरामी करते हैं, और वो तपतशिला भुनना जा रहा होता है। तो फिर उसमें से जो गंध निकलता है उन सूक्ष्म शरीर को भून कर, जीव मरता नहीं सूक्ष्म शरीर में, लेकिन दुख घना होता है, उसको ये काल खाता है, जिस कारण से आपको यहां ये पाले बैठा रोके बैठे। अब यह प्रसंग एक और उठता मन में, सृष्टि रचना आप पढ़ते हो तो वहां ये लिखा है कि परमात्मा ने इसको श्राप दे दिया 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी नत खाने का। तो क्योंकि हम बच्चे हैं, हमारे अंदर शंकाएं ढेर सारी उत्पन्न होती हैं जब प्रथम बार इस ज्ञान को सुनते हैं, तो बहुत सी त्रुटियां लगती हैं कि परमात्मा ने 4 युग इसको क्यों दे दिए, 3 युग क्यों दे दिए, पहले ही मना कर देते। ये पहले तो आपको वहां मना कर ही रहे थे सतलोक में कि तुम मत जाओ, इसकी बात मत सुनो, इसकी तरफ ना देखो, तब कौन से हम मान गए थे, हम भगवान से धोखा दिया और अपने पैर पर कुआड़ा मार के आज यहां ये गधे कुत्ते बनकर हम कष्ट उठा रहे। तो परमात्मा को पता था सत्युग त्रेता द्वापर में ये मेरी नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको सुख होगा इनके कर्म का, पिछले संस्कारों का, जो सतलोक से धन लेकर आए थे भक्ति का, आपका चलता रहा और कलयुग मां को खत्म हो जाता है। और परमात्मा आपको ऐसी भक्ति देगा जो दास आपको देगा, आप उतना ही चार्ज हो जाओगे उस भक्ति से, इस मंत्रों से, और उतना ही भक्ति युक्त हो जाओगे जिस भक्ति से आप वहां से संचित होकर आए थे, सैचुरेटेड थे, परिपूर्ण थे, और इसका कर्ज भी उतर जाएगा जिस कारण से रोक रहा है आपको। तो ऐसे हम वापस जाएंगे, वो भक्ति दास के पास उपलब्ध है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है, और अब सबका कल्याण होगा जो इस मार्ग पर लग जाएंगे। तो ये तो मालिक का वचन है होगा। तो सतयुग त्रेता द्वापर में हम गणे दुखी नहीं थे, वातावरण बढ़िया था, तगड़े तगड़े शरीर थे, लंबी लंबी आयु थी, स्वस्थ शरीर था, मृत्यु कुदे कुदे हुआ करती। तो कहने का भाव ये है कि अब परमात्मा को मालूम था कि जब इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, पुण्य कति खत्म हो जाएंगे, और जिन साधनाओं को ये सतयुग त्रेता में कर रहे थे उस समय उनको सुख हो रहा था, उनसे ऐसा लग रहा था, उनसे सुख नहीं हो रहा था, वो तो आपके संस्कार ही मिल रहे थे। अब कलयुग में परमात्मा को मालूम था काल जो है, अब काल ने क्या कहा था कि कलयुग के अंदर, ये प्रसंग बाद में सुनाएगा दास साहब को, तो प्रसंग ये चल रहा है कि सतयुग त्रेता द्वापर में आप इतने दुखी नहीं होते, इसलिए भगवान से दूर रहते हैं। और जो साधना आप कर रहे होते हो उनसे ये सोचते हो कि इसी से मुझे लाभ हो रहा है। और अब आपको जो साधना भी कर रहे हो और उसे लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि पहले तो आपके पुण्य थे वही फल रहे थे, आप सोच रहे थे इस साधना से हो रहा है। अब क्या किया काल ने, जब परमात्मा ने कहा काल से कि मैं नीचे जाऊंगा तेरी पोल खोलूंगा और सबको यथार्थ भक्ति यथार्थ ज्ञान बताऊंगा, सच्चे भगवान के बारे में जानकारी दूंगा और सबको नाम देकर के वापस पार करूंगा, इसलिए मैं नीचे जाऊंगा। तो काल कहते हैं एकदम इतना मेरे ऊपर टूट का पड़ा, धर्मदास जी को बता रहे हैं परमात्मा कबीर जी, तो मैंने धर्मदास सतनाम का सिमरन शुरू कर दिया और उस सतनाम के सिमरन से ही उस पर इतना बुरा अफेक्ट हुआ कि इतना भयंकर रूप धारण करके मुझ मेरी तरफ चला था, वो एकदम ऐसे गिर गया जमीन पर जैसे पक्षी के पंख कट जाया करते हैं, पड़ा पड़ा तड़पता है वो, विवश हो जाता है उड़ने में। यह सची थी आगी, ऐसे बिलखरा पड़ा पड़ा, एक सिमरन का इतना असर हुआ उस पर। तो पुण्यात्मा यहां परमात्मा हमें भी सतर्क करते हैं कि कभी भी आपके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आ जाए तो संसार के किसी व्यक्ति को मत याद करना, इस मंत्र को जाप करना। प्रथम मंत्र मिला है प्रथम मंत्र का जाप कर दियो, सतनाम मिला सतनाम का सिमरन श्वास से कर दीजिए, सार नाम मिला है तो सार नाम का सिमरन अपना कर दीजिए। सतनाम मिलने के बाद सतनाम का सिमरन करें, ऐसी आपत्ति में प्रथम मंत्र नहीं करें। सारनाम मिलने के बाद फिर सतनाम का सिमरन नहीं करें, वो सारनाम ही करें। प्रथम मंत्र मिला है तो प्रथम मंत्र ही करें, उसमें भी बहुत पावर है, ताकत है। तो ये सतीची है, तो उस पर कहते हो मैंने सिमरन किया तो वैसे गिर गया, तो समझ गया कि इसके पास कोई प्रबल मंत्र है जिस कारण से मैं विवश हो गया, चरणों में आके गिर गया, पैर पकड़ लिए घिसड़ घिसड़ का आके परमात्मा कबीर जी के। तो कहने का भाव ये है कि उस समय उसने क्या मांगा था, चरण पकड़कर कहने लगा भाई आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, क्योंकि परमात्मा जोग जीत रूप में थे। और क्या कहता है कि छोटे तो गलतियां करते ही करते हैं और बड़े अक्षमा किया करते हैं, आप बड़े भाई हो, बालक कितनी गलती कर दे, मैं तो आपको पिता के समान मानता हूं, मुझे क्षमा कर दो। बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगा। कबीर साहब परमात्मा कहते हैं मैंने उससे कहा कि ठीक है, क्षमा कर दिया। फिर कहता है कि एक काम करो, मेरे लोक में कुछ तरूटी हैं, आप तो परमात्मा तुल्य हो, आप तो उसी की शक्ति लेकर आए हो, मेरे लिए तो आप ही परमात्मा हो, आप ही पिता हो, मेरी कुछ त्रुटियां हैं, मेरे पास कुछ अभाव है, उसकी पूर्ति करो, दया करो। परमात्मा बोले बोल भाई क्या मांगे, ऐसे नहीं वचनबद्ध हो जाओ। परमेश्वर कबीर जी वचनबद्ध हो गए। तब इसने क्या मांगा कि तीन युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहुत जावे, ऐसा वचन हरमोय दीजे तब तुम गमन संसार ही कीजे, कि तीन युग में जीव थोड़े जा और चौथे युग में आप कितने जीव ले जाना। परमात्मा बोले भाई ठीक है, चल ऐसी मान लेंगे हम, तो कलयुग में ले जाएंगे। एक और है मेरी प्रार्थना। परमात्मा बोले बोलो क्या है, कि आप अपना ज्ञान बताकर ले जाना, जो आपके ज्ञान को माने आपके और आपके ज्ञान को ना माने वो हमारे, आप बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा को पता था कि बलपूर्वक वहां कोई ले जाया गया डटे भी को नहीं, वहां रुक भी नहीं सकते जब तक ये ज्ञान हृदय में नहीं समाओगा। परमेश्वर की वाणी है कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए और देखा देखी भक्ति का यू रंग नहीं ठहरा। तो परमात्मा ने तथास्तु कर दी, किया भी बात तेरी मान ली। फिर इसने कहा कि एक और अर्ज है मेरी कि वह भी बता दे। कि पहले मेरे दूत जाएंगे, मेरे संदेश वाहक जाएं, और बाद में आपके अंश आए, आपका प्रचारक आए। परमात्मा बोले यह भी बख्श दी तेरे को, कोई बात नहीं। फिर उसने क्या मांगा कि दो प्रार्थना मेरी और हैं, अकुवा भी बता दे कि त्रेता के अंदर मेरा पुत्र जाओगा, राजा दशरथ के घर जन्म लेगा, उसके ऊपर एक आपत्ति आवेगी उसके संस्कार वश, उसकी पत्नी को लंकेश्वर उठाओगा और वो बहुत शक्तिशाली होगा, सभी नीचे के देवताओं को भी अपनी कैद में डाल रखा होगा, उनको छुड़वाने के लिए एक बहाना बनाना पड़ेगा, उसकी पत्नी उठाओगा। लेकिन समस्या आएगी कि वो पुल नहीं बना पाएगा समुद्र के ऊपर लंका में सेना ले जाने के लिए, वो पुल बनवाना आप दया करना। अपना आत्माओं जैसे अब श्री राम और श्री कृष्ण ये विष्णु जी हैं, और विष्णु जी हैं तो परमात्मा की आत्मा, या इनको ये पद मिल गया तीन लोग की प्रधान बना दिए, अब ये फूले फिरे हैं, सोचे पता नहीं क्या बन गए, इनकी मृत्यु के बाद ये 84 लाख योनियों में आप जैसे प्राणियों के रूप में घूम रहे होंगे यहां पर। अब यह सब कब भूल पड़ी, परमात्मा कहते मेरे साथ दो भाई, मैंने सब जग भूल्या पाया, सब कब भूलना गिरी, एक ना भूल्या दो ना भूलित, और भूली सब संसारी, और ब्रह्मा विष्णु महेश देख लो तीनों देवा गरबारी, ये सांगदचाई बैठे ब्याह करवा के बैठे, जैसे हल्लाएं को नहीं यहां से, अरे इनकी आयु फिक्स्ड है। तो कहने का भाव ये है, तो ये आत्मा परमात्मा की है, जब ये दुखी होती है तो वही आकर इनकी मदद करता है। अभी तक हम जैसे हमें पहले कोई दुख आता था, भगवान को याद करते थे और हमारा संस्कार ठीक होता था, तो वो भगवान ही मदद करते थे, हम सोचते थे हनुमान जी ने कर दिया ये काम। अब पता चला हनुमान जी ने एक भगत आदमी थे, तो भगवान के स्तर का काम भगत कैसे कर सकता है। और श्री राम और कृष्ण की शक्ति का हमें पता चल गया कि ये किसी के संस्कार में फेरबदल नहीं कर सकते, तो परमात्मा ने वो तथास्तु कर दिया कि ठीक है, उसके पुल को भी हम बनवाएंगे। फिर उसने फिर प्रार्थना की कि द्वापर के अंदर मेरा पुत्र यही विष्णु श्री कृष्ण रूप में जाएगा, और वो एक शरीर छोड़ने के बाद एक मंदिर बनवाओगा जगन्नाथ के नाम तक, और समुद्र उसको बनने नहीं देगा, क्योंकि जब वही आत्मा श्री राम रूप में जाते हैं तो समुद्र को डराते धमकाते हैं, अग्निबाण दिखाया था श्री रामचंद्र जी ने कि या तो रास्ता दे दे नहीं तुझे जला दूंगा, तो ब्राह्मण रूप धारण करके समुद्र बाहर आया था, क्योंकि ये समुद्र का जो जल का एक देवता है वरुण, और उसके अधीन ये सभी अन्य छोटे देवता हैं, समुद्र का एक अलग से देवता है, तो वो बाहर निकल कर आया ब्राह्मण रूप धारण करके। तब तो उसने प्रार्थना की थी, विनय की थी कि ऐसा ना करो, अगर इस समुद्र को फूंक दोगे तो रास्ता आपको फिर भी नहीं मिलेगा, ये खाई बन जाएगी कई हजार फुट गहरी, ऐसा काम करो। उसने तरीका बताया कि नल और नील नाम के दो व्यक्ति हैं, आपके सैनिक हैं, उनके पास उनके गुरुदेव की द्वारा दी हुई एक शक्ति है। तो नल नील त्रेता युग में परमात्मा आए थे, जैसे कलयुग में कबीर नाम से थे तो त्रेता में मुनिंदर नाम से आ रहे थे, नल और नील उनके शिष्य बने थे। ये लंबी कथा फिर बताऊंगा, लेकिन आज जो प्रसंग है कुछ और है। रामचंद्र जी ने समुद्र को डराया धमकाया था, खुरकाया था, जिससे वो अक्षुब्ध बहुत हो गया। फिर उसने क्या किया, श्री कृष्ण रूप में जब ये श्री विष्णु जी यानी रामचंद्र जी आए तो उन्होंने मृत्यु के बाद एक इंद्र दमन नाम के राजा थे उड़ीसा के, उनको स्वप्न में कहा कि मेरा एक मंदिर बनवा दे और इस स्थान पर बना दे समुद्र के किनारे, और जगन्नाथ नाम रख देना। तो काल ने कहा था कि वो समुद्र वो प्रतिशोध लेगा, जब श्री राम रूप में इसने उसको खुरका धमकाया था, अग्निबाण दिखाकर फूकना चाहता था, वो बेइज्जती मान गया, उसका बदला लेगा और वो बनने नहीं देगा मंदिर को। हालांकि परमात्मा मंदिर के विरोध में थे, फिर भी उन्होंने उसकी उस बात को भी मान लिया। लेकिन परमात्मा ने यह कहा था कि उस मंदिर में ना कोई मूर्ति पूजा होगी और ना ही कोई वहां बकवाद चलेगी, तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो उसने कहा था ठीक है जी, जैसे आप उचित समझो ऐसे करना, लेकिन यह दया करियो। तो कहने का भाव यह है कि ये उसने कंडीशन रखी थी। फिर जब परमात्मा ने सारी यस कर दी, तब खड़ा हो गया, काम बनया, गर्द निकली और बच्चा सुखी। कहने लगा ठीक है, अब बेशक जाओ जोग जीत संसार में। देखो जब आप कलयुग में आओगे, आपसे पहले मैं अपने दूत भेज भेज के उनको ऐसा ज्ञान से रंग दूंगा, शास्त्र का बहाना करेंगे, नाम सदग्रंथों का लेंगे और ज्ञान सारी बकवाद सुनाएंगे। तीर्थ व्रत जप तप मन लाऊं, देवल धाम और पत्थर पुजवाऊं और अनेक प्रकार के जैसे कोई व्रतों पर लगा दिया। और फिर कहते हैं द्वादश पंथ करूं मैं साधा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और उन द्वादश पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, उन 12 पंथों में जो भी नाम लेगा दीक्षित होगा, जो कलयुग में चलाऊंगा। तो वो सभी मेरे ही मुख में आवेंगे। जावो जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। के जीव तुम्हारा कहा नहीं मानेंगे और मेरी तरफ खड़े होकर के यानी मेरे वकील बनेंगे और तेरे साथ वाद विवाद करेंगे। उसने कहा था कि प्रथम अंश हमारे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब गमन संसार ही कीजे। तो यहां एक प्रश्न और उठता है कि जो दास बताना चाहता था कि भगवान ने, परमेश्वर जी ने ये 3 युग देने थे, वो तो जानी जान थे तभी तो दिए हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में आप भगवान को पहचान नहीं सकते। 4 युगों में आए हैं मालिक, सतयुग में सत्सुकृत नाम से और 5 वर्ष की आयु में मनोदशों के छक्के छुड़ा दिए थे। पर ये मानने तभी ना परमात्मा को वामदेव कहने लग गया वो मनु और ये अन्य उसके साथी ब्राह्मण गुरु। वामदेव का अर्थ होता उल्टा देवता। ये कहें ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा, और परमात्मा कह के ये तो भक्ति योग्य ही नहीं है, ये नाशवान है, परमात्मा कोई और है। तो इस करके वो निराकार बताऊं परमात्मा के साकार है। तो उल्टा ज्ञान तो उनका था और परमात्मा को उल्टा देवता कहने लगे। वाम माने उल्टा, जैसे एक राइट हैंड को बायां हाथ कहे हैं और एक लेफ्ट को उल्टा हाथ कहते हैं बामा, तो वामदेव नाम रख दिया उस मालिक का। और सुना नहीं हमने एक भी, क्योंकि सभी सुखी थे, समय पर खान में आहार था, बड़े बड़े तगड़े शरीर थे, अपना मस्त मस्ती कार्य कर रहे थे। ऐसे द्वापर में, ऐसे त्रेता में, त्रेता में परमात्मा सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से और कलयुग में कबीर नाम से। यदि हम इसलिए मालिक आए, हो सके किसी की बुद्धि ठिकाना आ जाए, लेकिन हमने माना ही नहीं। अब मानेंगे, अब हम मान रहे हैं, आप मान गए तभी तो लाखों की संख्या में दास के साथ हो लिए, प्रमाण सामने है और आपका समाधान सामने। कितने सुख दे रहा है भगवान, जो भगवान दिया करता है, जिन भगवानों को आप पूजा करते थे उनसे ये काम हुआ नहीं, इस मालिक नाते ही कर दिए। तो भगवान अब विलाप को सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता ढेल रे। के चारों युगों में हम आए और हमने ये ज्ञान दिया, पर भी लेन जात है दुनिया हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। तो इसलिए परमात्मा ने युग कलयुग सेलेक्ट करा कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनकी सारी बैटरी डाउन हो लेगी, इनके पुण्य खत्म हो जाएंगे और ये फिर भक्ति भी करेंगे, क्योंकि आत्मा भक्ति बिना रह नहीं सकती। तो काल ने ये नकली दूत भेजने शुरू कर दिए। महात्मा बुद्ध भेजा, उसने पूरा चीन नास्तिक कर दिया, क्योंकि वो पूर्व जन्म का संस्कारी था और उसकी पूर्व जन्म की भक्ति के कारण उसके वचन में भी शक्ति थी। तो कुछ लोगों को प्रभाव हुआ, कुछ उनके काम भी सरे, तभी तो अनुयायी बने हम। फिर जो साधना उसने दी थी उससे कोई लाभ हुआ नहीं, जिस कारण से उन्होंने ये मान लिया कि भगवान कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि जो साधना करते थे लाभ ही नहीं हो रहा। तो अब ये सती थी, फिर थोड़ी सी मालक की दया हुई, शंकराचार्य आगे, नहीं तो बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैल जाता। तो इस आदि शंकराचार्य जी ने, जो शंकर जी के लोक से आए थे, तो उसने कोशिश की उसको रोकने की, तो वो भी कालाधीन है। तो उसने श्री ब्रह्मा विष्णु महेश पर लाकर हमारी सुई केंद्रित कर दी कि ये भगवान है। ये तो वही होगा कि आसमान ते गिरे खजूर में अटके। अब हम सारे ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी हो गए, ब्रह्मा को तो नहीं पूछते, लेकिन विष्णु और शिव की तो भक्ति हम कर ही रहे थे। और यही उसमें शंकर पांचम में लिखा है, जो आदि शंकराचार्य का अपना अनुभव है, उसने लिखा है कि शिव और विष्णु की भक्ति करो। हर दूसरी तरफ कहता जीव ही भगवान है, तो ये कहते उबाई का ज्ञान। तो परमात्मा ने अब आकर आपका खजूर भी काटा, अरे आएंगे हम ठीक ठिकाने पे और ये पार होएंगे, सबका कल्याण होगा। ये वचन भगवान के हैं, दास सुना रहा है, बस इतनी सी बात है। जो दास आज प्रसंग सुनाना चाह रहा है वो ये है कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरवाऊं। अब बारह पंथ तो ये कबीर साहब के नाम से चले हैं गरीब दास पंथ तक, उसके बाद ये राधा स्वामी पंथ, ये पक्का काल का एजेंट था ये शिवदयाल जी, इनका कोई गुरु नहीं। और परमात्मा क्या कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। अब ये जो शिवदयाल जी के पास ना कख ज्ञान था, कह है नहीं पता था भक्ति का, और कैसा जुलम कर गया। इसके जो अनुयायी हैं, जो राधा स्वामी पंथ से संबंधित हैं, उसी से एक ब्रांच दन दन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वहां है, और उसी से व्यास में, व्यास से ही ये सावन सिंह जी के शिष्य हुए थे, खेमामल जी, जो सच्चा सौदा सिरसा के अंदर जिन्होंने डेरे स्थापना की, और वो सावन सिंह जी के शिष्य थे। सावन सिंह जी का एक चेला कृपाल सिंह, उनको वहां गद्दी मिली नहीं, और इधर दिल्ली में जाकर अपना अलग से स्थापना कर दी आप गद्दी की, और बन गए गुरु बनमुखी ऐसे सरसा के अंदर। तो कहने का भाव यह कि इनमें कोई भी ज्ञान नहीं है, कह खह का पता नहीं लोगों ने भक्ति मार्ग का। और एक और पढ़ाई पढ़ा दी कि वेद और गीता हमने जरूरत नहीं, हमने वेद और गीता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे गुरुआ दी जो वाणी है शिवदयाल जी की, वो दूर से आए थे, वो धनी थे, परम धनी, उन्होंने जो वाणी बोल रखी है तो वो संत वाणी श्रेष्ठ है। शिवदयाल जी के जो वचन है वो बिल्कुल सत्य है, और फिर वो ये भी कहते हैं कि वेद भी तो किसी ने लिखे हैं, गीता भी तो किसी ने मनुष्य ने लिखी है। इस तरह की पली देकर वो भोले सरदारो इस काल के पंथ में और दृढ़ होकर बैठे। अब उनको तो पता नहीं बालक है, इस दास को ज्ञान हुआ, दास की आत्मा रो रही, इनके साथ क्या बनेगी आगे चल के। मुझे कोई शौक नहीं मुझे निंदक को आने की। ये निंदक कहते हैं रामपाल तो निंदा करता है, इसका तो यही काम है, हमारे गुरुओं के बारे में अटपट बोलता रहता है। आपके गुरुओं को ये दास क्या बोलता है कि वो एक पुण्य आत्मा थे, और अच्छी आत्मा जो होती है पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं वो जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहां उनको सफलता मिलती चली जाती है। यदि शिवदाल जी राजनीति में आ जाते तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब काल ने इनका दुरुपयोग वहां करना था, संत मते मिला दिया और कह कह का ज्ञान निर्दुनिया भरमा दी, करोड़ों की संख्या में डबो दिया। पहले इसका ज्ञान सुना दूं, कैसा ज्ञान रखता था। पुणात्माओं ज्ञान से ही इंसान का पता चलता है, और अब इंसान चला गया, उसका जो अनुभव था उसने सारा अपना बोल दिया, इसके चेलों ने लिख लिया और उसको 150 वर्ष हो गए पढ़ते आने। वो उन्हीं की लिखी हुई बुक है, दास सुना रहा, पढ़ रहा है, पढ़ना कोई गुनाह नहीं। आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, आप अकेले पढ़ रहे हो, मैं लाखों को पढ़ा रहा हूं, बता उसमें दुख क्यों मानते हो आप लोग। आपकी पुस्तक अरदास पढ़ा रहा है, अगर वो अच्छा ज्ञान है तो ग्रहण कर लेंगे सारी जनता, और गलत है तो उसको त्याग देंगे। पढ़ाने का यही उद्देश्य दास। और फिर वो कहते हैं तो निंदा करता है, निंदा तो वो होती है, मैं झूठ बोलता हूं और पीठ पाछे कहता हूं, सरेआम बोल रहा हूं। और लगभग 10 वर्ष हो गए टीवी चैनल पर और वीडियो सीडी बना बना के भगत दे रहे हैं कि एक का तो जवाब दे दो, रामपाल ने या झूठ बोल दी, एक जवाब दे दो, तो ये झूठे हैं। तो आज मानो बड़ा बुद्धिमान है, बाल की खाल उतार लेगा, अभी अपने आप यहां आएगा, सारा विश्व नाम लेगा, छोड़ देगा नकलियों को। तो थोड़ी सी झलक दिखाता हूं, ये देखिएगा, एक पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, अरे इन देवता के द्वारा लिखी गई है, या तो मैं तो पढ़ कर सुना रहा हूं, अब इससे पता चलेगा उनको ज्ञान कितना था। देखिएगा, ये पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, ये राधा स्वामी सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास, ये कहां से छपी है, ये है प्रकाशक जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब से। ये पहला संस्करण 1961 में छपा था। और ये कहां से मुद्रक हैं, मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली से। ये और सारा देख लो, ये सारा, अब इसकी भूमिका से पता चलेगा सारा। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। ये क्या कह रहा है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का प्रवचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा उनके अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट करे थे, किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के पश्चात कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था। 1902 में, याद रखियो, उत्तरागज हो, आज 2014 आ गया, 112 वर्ष हो गए सड़ंगे छपे न पढ़त्या ने। सन 1902 में बाबा जैमल सिंह जी ने महाराज ने सार्वचनता दसवीं वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में पंजाबी भाषा में छपवाया था। प्रस्तुत पुस्तक उसी ग्रंथ प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है, यानी उसकी हिंदी अनुवाद है पंजाबी से। और इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। संत हमें बाहरमुखी क्रियाओं और कर्मांडों जितना पढ़ नाम ने समझ सिया। देखो ये स्वामी जी कौन थे। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। ये तुलसीदास हाथरस वाले के भक्त थे, ये भी याद रखना। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब जी की काफी संगति की थी। शिवदयाल जी ने भी उस तुलसीदास के काफी वचन प्रवचन सुने थे। बचपन से ही स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। अपनात्मा ये जो हठ योग स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी ने कराया, ये किसी भी संत ने नहीं किया जो जिनको भगवान मिले। आदरणीय धर्मदास साहेब जी, आदरणीय मुरुखदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी और आदरणीय गरीबदास साहेब जी, गांव छुड़ानी जिला धज्जर वाले आदरणीय गीसादास साहेब जी, इन्होंने कभी भी ये हठ योग नहीं किया जो इसने डलेड हुए। और देखो 17 वर्ष तक साधना करके इसने के क्रिया, फिर देखो ये 6 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। सन 1861 में साधना सुधना करके 1861 में सत्संग करण जोगा हुआ। उसके जब योग्य हुआ सत्संग करण सुनाने का, जिसने इसने जैसा अनुभव हुआ जैसा भगवान जाने। आप देखो कबीर साहेब, गुरु नानक साहेब, रविदास, दादू, पलटू, तुलसी साहेब और आदि महात्माओं का भी यही उपदेश था। अब देखो इन्होंने कैसा काम कर दिया। यही बात बिगड़ी रही कि ये झूठ बोलते रहे और उन महापुरुषों और सदग्रंथों का नाम लेते रहे कि उसमें भी ऐसा ही लिखा है, उन्होंने भी यही भक्ति करी थी, यही नाम जपे थे, दादू साहेब ने, नानक साहेब ने और रविदास साहेब ने और कबीर साहेब ने। तो आम आदमी ने सोचा भी इतना बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है, सच्ची कहता होगा। सब ने स्वीकार कर लिया, ठीक है उन महापुरुषों ने भी ऐसा ही नाम जपे होंगे जो शिवदयाल जी जपे और हमें दिया करते थे। अब देखो यही उपदेश था। समस्तर बेज, मौलाना, रूम, हाफिज आदि फारस के संतों का भी यही मार्ग था। अब हम यहां आते हैं। बाबा जैमल सिंह का जन्म जुलाई सन 1839 में ग्राम गुमान जिला गुरदासपुर में हुआ। आपके पिता का नाम सरदार जोत सिंह जी था तथा माता का नाम बीबी दया कौर जी था। आपको बचपन से ही गुरुवाणी का शौक था बाबा जैमल सिंह को, और छोटी उम्र में ही आपने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुरू कर दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब के में स्थान स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया। बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। आप इसी तलाश में घर से निकल पड़े और जगह जगह जाकर महात्माओं से मिलते रहे। 5 शब्द का भेद प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान इसी खोज में आप स्वामी जी महाराज के पास आगरा आए। जैमल सिंह जी कह रहे हैं बाबा जैमल सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब पठार उसमें लिखा था 5 प्रधान और 5 नाम और उन 5 नामों की धुन धुनकार। अब गुरु ग्रंथ साहिब में तो ये लिखा है कि वो 5 प्रधान है और उनके 5 ही नाम और उनकी भी धुन है। वो 5 नाम प्रधान कौन से? शरीर के अंदर मूल कमल, इन कमलों के अंदर जो 5 प्रधान बैठे हैं, ये नाम तो इनके बारे में संकेत था। यो इस यहां से पकड़कर खोज पहुंच गया शिव जाल का, फंस गया जयमल सिंह जी। उसने इसको पढ़ाई पढ़ा दी, ये पांच नाम है ओंकार अहंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम। इसने उस पांच, ये वो पांच नाम मान लिए, उसको बड़ा विद्वान मान लिया और फिर उसका चेला बन गया। देखो तो स्वामी जी महाराज के पास आगरा आए और उनसे सन 1856 में नाम दान प्राप्त किया। बाबा जी ने हक हलाल की रोजी कमाने के ख्याल से सन 1856 में 24 नवंबर पंजाबी पलटन में नौकरी कर ली और 32 वर्ष तक सेना में नौकरी के बाद 18 अगस्त सन 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए तथा तो ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। व्यास आकर बाबा जयमल सिंह जी ने, बाबा जी महाराज ने वहां सत्संग शुरू किए अपने आत्माओं। ये देखो कमाल की बात है, सन 1856 में जयमल सिंह जी ने दीक्षा ले ली किस पे, शिवदयाल सिंह जी पे, और सन 1861 में सत्संकरण जो होगा तब तक तो साधक था, अंडर ट्रेनिंग था, उस समय उसने नाम ले दिया। देखो आपके सामने है कि सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया, उस दिन नाम देना शुरू किया सन 1861 में, और बाबा जयमल सिंह चेला बन लिया 1856 में, यानी पांच साल पहले। तब तो कच्चा एक गुरु था और कहते हैं कच्ची सरसम पीड़ के खल भवना तेल। अच्छा फिर सन 61 वर्ष की उम्र में सन 1818 में शिवदयाल जी का जन्म हुआ, 60 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु होगी सन 1878 में, सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी, और सन 1889 में 11 वर्ष बाद बाबा जयमल सिंह ने वहां स्थापना की, चेले बनाने लग गया ब्यास में। यदि बाबा जयमल सिंह जी को नाम देने का अधिकार होता तो वो पहले शुरू कर देता, नौकरी भी करता, जैसे दास को आदेश दे दिया था मेरे पूज्य गुरुदेव ने, दास एक जूनियर इंजीनियर यानी जेई की पोस्ट पर सिविल के अंदर हरियाणा के अंदर नौकरी पर था, और सन 1988 में दास को उपदेश मिला था, अपनी नौकरी भी करता था, भजन भी करता था। 1988 मिला था, 1994 में 6 वर्ष के बाद गुरुदेव ने कहा बेटा अब तू संभाल इस काम को, तो 1994 से एक साल 1995 तक अपनी नौकरी भी करता था, उपदेश भी देता था, और 1995 में काम इतना बढ़ गया प्रचार का कि नौकरी किसे रिजाइन करना पड़ा। तो अगर इसको आदेश होता बाबा जयमल सिंह जी को तो उसी दिन शुरू कर देता। ये 1878 में मृत्यु होली, 1889 में युवा गुरु बनकर नाम देने लग गया रिटायर होकर के, वो ब्यास से शुरू किया इसे। तो इसको आदेश नहीं था, जैसा भी झूठा सच्चा पंथ था उसको भी आदेश नहीं था, उसने आप पे चमटा गाड़ दिया, और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, ये आपके प्रमाणित करेंगे, पहले इसका ज्ञान दिखा दूं किसे विद्वान थे फिर कहां गए होंगे, और कहते समाधि लाओ, जब तुमने ये नहीं पता समाधि लगा किसके लिए रहे हो, तुम्हें ना सतनाम का पता ना सतलोक का पता ना सतपुरुष का पता, झूठा ज्ञान फिर ध्यान कहा लाओ, ये बाद विदा चतुराई। देखिएगा 1856 में नाम ले लिया बाबा जयमल सिंह ने, 1856 नाम दान प्राप्त किया और 32 वर्ष सेना में नौकरी करके, और फिर सन 1889 में 15 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए और ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे, और वहां आकर सत्संग शुरू कर दिया, हो गया गुरु बाबा जयमल सिंह जी, ना इसको आदेश, जिसा भी था थोड़ा बहुत टूटा फूटा वो भी गलत। अब इनकी इतिहास देखना, देखो आपको बालक विद्यार्थी सिलेबस को नहीं समझ सकता, अगर विद्यार्थी समझ लेते फिर टीचरों की आवश्यकता क्या थी, इन गुरुओं की क्या आवश्यकता थी, जब भगत आप पे सारा कुछ उड़ जा लेते, नौमन सूत उड़ जिया ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुड़ जा दे भाई उड़ जाए न दूजी वार। अब ये दास है वो सतगुरु, ऐसा सुड़ जा दू इस कलयुग में अध्यात्म ज्ञान नहीं उड़ जाएगा, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो। अब और देखना कमाल है। यो तो जयमल सिंह ने वहां शुरू कर दिया। अब जयमल सिंह जी का शिष्य हुए सावण सिंह जी, सावण सिंह जी के शिष्य हुए बाबा खेमामल जी। बाबा खेमामल जी जिन्होंने बलोचिस्तानी सामस्ताना भी कहने लगे, सिरसा के अंदर डेरा स्थापना की। तो बाबा जयमल सिंह जी ने उनको कोई आदेश नहीं दिया नाम देने का। ये जिसा भी टूटा फूटा था वो भी गलत कर रहे हैं। अब दिखाता हूं आपको। अब यहां देखो प्रश्न नंबर 7 पढ़ रहे हैं, वही हम भूमिका है, सार्वचन वार्तिक भूमिका। हम प्रश्न नंबर 7 पढ़ रहे हैं, 6 पढ़ लिया। 29 दिसंबर 1903 को बाबा जयमल सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समागे। अपने जाने के करीब 6 महीने पहले आपने अपने प्रमुख शिष्य महाराज सावन सिंह जी को अपना जानी सीन यानी गद्दी नशीन बना दिया उत्तराधिकारी। ठीक है, हजूर साहेब महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई सन 1858 में ग्राम जटाना जिला लुधियाना में हुआ। आपके पिता सरदार काबल सिंह जी फौज में सूबेदार मेजर थे। आपकी माता जी का नाम माता जीवनी जी था। हजूर महाराज सावन सिंह जी का जी थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में विद्या अध्ययन करके बाद में फौज में इंजीनियरिंग विभाग में नौकर हो गए। आपके हजूर ने बाबा महाराज से यानी जयमल सिंह जी बाबा हजूर महाराज जी जब मरी पहाड़ पर सरकारी नौकरी में थे तब बाबा जयमल सिंह जी महाराज वहां पर धारे। हजूर ने बाबा जी महाराज से 15 अक्टूबर 1994 में नाम दान प्राप्त किया। अठारह सौ चौरानवे में नाम दान प्राप्त किया। हजूर महाराज जी ने 45 वर्ष तक पंजाब तथा देश के अन्य भागों में सत्संग और नाम प्रचार किया। डेरा आपके समय में एक कॉलोनी के रूप में विकसित हो गया। ब्यास वाला यानी सावण सिंह जी की महिमा सुना रहे। आपने 1,25,000 से अधिक जीवों को नाम बख्शा तथा आपके समय में अमेरिका यूरोप दक्षिण अफ्रीका में भी संत मत का प्रचार हुआ। हजूर महाराज सावण सिंह जी ने 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानी सीन नियुक्त किया। 20 मार्च 1948 को सावण सिंह जी ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया सरदार जगत सिंह। और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। अब होगी बात आगे। ठीक है, अब ये याद रखना कि बाबा सावन सिंह जी 2 अप्रैल 1948 में मृत्यु को प्राप्त हो गए और जगत सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी यानी नाम दान देने का अधिकारी बना गया। फिर यहां सच्चा सौदा सिरसा की स्थापना में लिखा है कि 2 अप्रैल 1949 को श्री सामस्ताना जी खेमामल जी ने और बाबा सावण सिंह जी के आदेशानुसार डेरे की स्थापना करी। उस दिन नाम देने लगे उससे आदेश प्राप्त करके। वो तो 1 साल पहले मर चुका था। दिखाता हूं, ये देखिएगा, सतगुरु के परमार्थी कृष्ण में एक पुस्तक है जो सच्चा सौदा सिरसा से प्रकाशित है, पहला भाग पहला, और इसके संग्रहकर्ता पूज्य हजूर महाराज गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। ये वही है, सर्वाधिकार सुरक्षित है, ये वही पुस्तक है, सदगुर के परमार्थी कृष्णों का वृंतांत, ये वही संग्रहकर्ता हुई। और यह छपी कहां से है? प्रकाशक है इंद्र सेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। ये छपी कहां है? इंद्र सेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा बेग गुरु सिरसा हरियाणा भारत। इसके हम 27 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये हैं श्री परम संत सामस्ताना जी महाराज। ये इन्होंने नारा लगाया धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और देखिएगा दूर से पूरा चित्र देखिए महापुरुष का, ये कितनी अच्छी आत्माएं थी लेकिन फंस गए इनके नकलियां के। अब यहां इसका इनका थोड़ा सा इतिहास है। परम पूज्य बेप्रभा मस्ताना जी के पावन जीवन की झलक। परम संत बेप्रभा मस्ताना जी गांव कोटड़ा तहसील गंधेय रियासत कुलैत बिलोचिस्तान के रहने वाले थे। आप जी के पिता का नाम पूज्य श्री पिल्लामल जी था, जो अपने गांव के साहा जी यानी सेठ जी थे। आप जी के पूज्य माता जी का नाम पूज्य तुलसाबाई जी था। ठीक है, अब यहां देखो संवत विक्रमी संवत था 1948 विक्रमी संवत 1948 सन 1891 में कार्तिक पूर्णमासी को कुल मालिक प्रभु परमात्मा ने बेप्रभा मस्ताना जी के रूप में पूज्य पिता श्री पिल्लामल जी के घर जन्म लिया। आप अक्षत्रिय वंश से संबंध रखते थे। ठीक, अब देखिएगा 27 पृष्ठ पे। अब हम 27 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं। यहां लिखा है कि बेप्रभा मस्ताना जी ने यानी खेमामल जी ने संगत के बार बार विनती करने यानी संगत के आग्रह करने और बाबा सावन सात जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नाम दान देना शुरू कर दिया। अकल देखो इनकी। तो अप्रैल 1948 को तो सावन सिंह जी की मृत्यु होली और 1949 में संगत के आग्रह करने थे और सावन सिंह जी के आदेश से इन्होंने नाम देना शुरू कर दिया। अब देखो थोड़ा सा यहां से झलक पता लगेगा। अब 26 पृष्ठ देखो, 26 पृष्ठ। अब यहां आगे आखिर बेप्रभा मस्ताना जी महाराज अपना घर परिवार छोड़कर ब्यास चले गए और वहीं अपने गुरु बाबा सावन सिंह जी की हजूरी में ही रहने लगे। कुछ समय बाद बाबा जी ने आप जी को नाम प्रचार करने का हुक्म देकर ब्यास से सिरसा भेज दिया। कुछ समय आप शहर में बने राधा स्वामी सत्संग घर में रहे और फिर सन 1948 में 57 वर्ष की आयु में शहर से करीब 2.5 किलोमीटर दूर बेगू रोड पर डेरा सच्चा सौदा कायम किया। अब देखो 1948 में इन्होंने डेरा सच्चा सौदा कायम कर दिया बेगू रोड पर और 1949 में फिर नाम देने लगे, वो भी संगत के कहे पाछे। अगर सावन सिंह जी का आदेश होता तो 1948 में शुरू कर देते हुए वो छोटे सत्संग आश्रम में शुरू कर देते नाम देना था, आदेश होता। वास्तविकता क्या है कि 1948 में उन्होंने जगत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया और ये सोचे थे हमारा दाव लगेगा। ऐसे कृपाल सिंह जी थे तो इनको बाईपास कर दिया, तब ये दोनों अपना ठाकर सदर चल पड़े यहां बैठे। अब यहां यानी सच्चा सौदा सरसा और जगमाल वाली ये दोनों वही विचार हैं जो सावन सिंह जी के थे और कृपाल सिंह वही, और सावन सिंह जी के पास जयमल सिंह जी के विचार, जयमल सिंह जी के पास शिवदयाल जी के विचार। इससे थोड़े मगना समझ लेना। और उस आगरा के जो शिवदयाल जी के ही विचार इसके अंदर, जो मथुरा के अंदर जय गुरुदेव के प्रवर्तक थे श्री तुलसीदास नाम था उनका, उन जय गुरुदेव नाम से प्रसिद्ध थे वो, और उन आगरा से ही एक और बबूल का पेड़ जनौद के अंदर ये ताराचंद जी ने एक उड़ा न्यारा स्थापना कर रखी है। ये सारे एक ही कुएं के पानी हैं, शिवदयाल जी के विचारों पर आधारित हैं। अब शिवदयाल जी के विचार सुना दूंगा अपने, वो किसा विद्वान था तो इनके पास क्या होगा अंडरस्टूड। अब आपको सार्वचन वार्तिक फिर दिखाता हूं जिसके अंदर शिवदयाल जी के ज्ञान का पता चलेगा वो कितना विद्वान था और कहां तक पहुंचा होगा। जो 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम साधना करने के लिए दबाव देते हैं तो उसने तो दिनरात 17 वर्ष किया था और उसने के पाया वो दिखाता हूं अपने, उन्होंने कैसा जाना भगवान सत्पुरुष को जानसी और सतगुरु तिसका नाम। जिसने परमात्मा को जान लिया वो सतगुरु है। इन्होंने कैसा जाना भगवान, ले दिखाता हूं। ये सार वचन राधा स्वामी वार्तिक प्रथम भाग आपको फिर से सुना रहे, ये वही है जो अभी आपको दिखाया था। ये कहां से छपा है, यहां से। ये इसके प्रिंटर हैं और ये वो भूमिका आपको सुना रहे थे। अब हम आते हैं, ये आपको समझा दिया। अब देखो, हजूर महाराज सावन सिंह जी ने 20 मार्च 1948 में रजिस्टर वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह को अपना जानीसीन बना दिया, जानसीन यानी उत्तराधिकारी। और 2 अप्रैल 1948 में निज दान चले गए और वो यहां से दब उठ के चला गया जब जगत सिंह को गद्दी दे दी। बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमावल्दी सरसा आ गया और एक साल पाछ उनकी मृत्यु के बाद और जनता कहने लगी जी आप नाम दो नाम दो, नाम देने लग गया। देखा वाह रे वाह, घर की बहिर काका लिखनिया, कुछ भी लिखो कुछ भी बनाओ, यानी गद्दी गेट बना रखे, इतने जीवों का नाश कर दिया, कुछ भी ना सोची इन लोगों ने। ऐसे कृपाल सिंह भाग गया वहां से, जब उसने गद्दी ना मिली इसने वहां बात बिगाड़ दी। तो इस अरे यो जो मान ले आदेश भी होता तो यो के कला तोड़ते। अब दिखाता हूं आपको इसी के विचार, ये देखिएगा। अच्छा, ये सारा लेख भूमिका का अभी तक चल रहा था, यहां तक आ रहा है ये 8वां। और ये इसके लेखक हैं एस एल सोंदी सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास वाले ने ये सारा कुछ लिखा है, ये देखिएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। वचन जो कि स्वामी महाराज के आखिरी रोज पेशतर अंतर ध्यान होने के वास्ते ये सुनाया गया। अब हम आगे आते हैं, ये तो उसकी महिमा गाई है यहां क्या क्या। अब यहां आते हैं हम पृष्ठ 13 पा गए। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का, यानी श्री शिवदयाल जी के प्रवचनों का ये संग्रह है, वो सुनाते हैं जो उसने प्रवचन किए हैं, जो ज्ञान जनता को श्रद्धालुओं को बांटा है। ये देखिए राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का, यह जगत नाशवान है, श्री शिवदयाल जी के वचन है ये, और सब असबाब भी उसका जिसका नाशवान है। अब यहां से देखेंगे, अब ये क्या कह रहे हैं कि सिर्फ काम इतना है, इंसान अपनी, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम राधा स्वामी में पहुंचावे। यहां सतनाम और राधा स्वामी को इन्होंने मुकाम माने स्थान कहा है, मुकाम माने स्थान, उस स्थान पर पहुंचावे अपनी सूरत ने। साधक कितना काम करे, 14 पे देखो पहुंचावे। ठीक, अब हम यहां पढ़ेंगे। फिर ये क्या कहते हैं कि जितने भी आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब दूर स्थान नहीं पहुंच पाए। तो बहुत से तो पहली मंजिल, मंजिल माने यहां देखिए, मंजिल माने स्थान, पहली मंजिल पर स्थान, पहले स्थान पर रह लिए, और कोई एक दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले साधक और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, अब यहां सतनाम को मंजिल यानी सतनाम स्थान पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी तक पद पर पहुंचे। अब यहां सिद्ध हो गया इस प्रवचन में कि सतनाम और राधा स्वामी एक स्थान माना गया। और आगे देखो, अब यहां देख, अब हम 15 पे पढ़ेंगे, 15 पे, ये वही है राधा स्वामी सार्वचन वार्तिक पहाली। अब चौथा वचन देखिएगा, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। हुआ तो स्थान भी कह रहे, मालिक का नाम भी वही है। इनका कथन है के दिल्ली एक स्थान भी है और दिल्ली ही प्रधानमंत्री का नाम भी है, सच्चा मालिक का नाम भी दिल्ली है और सच्चा मालिक भी दिल्ली है, ये समझो इनका कहने का भाव। जैसे कहना चाह रहे कुल मालिक और सच्चे साहिब का है। अब क्या कहते हैं, और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अकल देखो इनकी है भगवान। अब इस पहले पृष्ठ पे 13 पृष्ठ पे कह रहे हैं कि यह सतनाम एक स्थान है, 13 पृष्ठ पे, यानी मुकाम सतनाम, ये सतनाम स्थान, राधा स्वामी भी स्थान। और फिर 14 पृष्ठ पे इसने क्या कहा इन्होंने कि बिरले साधु पांचवी और चौथी पहली मंजिल तक रह लिए और कुछ पांचवी मंजिल पहुंचे यानी सतनाम पे, पांचवी मंजिल को सिर्फ संत पांचवी मंजिल यानी सतनाम पर पहुंचे। मंजिल माने स्थान, यह सतनाम स्थान है। और यहां के कह रहे हैं देखिएगा, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का, ठीक है, इस स्थान भी है और वो नाम उसका भी है। इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम को स्थान बताऊं थे, मुकाम माने भी स्थान, स्थान का स्थान है, इनका अर्थ ये बनता है, स्थान का स्थान है सतनाम। और जिसको इस सतनाम को जिसको संतों ने सतलोक सचखंड यानी सतनाम को, सार शब्द भी सतनाम को और सत शब्द और सतनाम भी सतनाम को और सतपुरुष सतनाम को करके बयान किया है। ये पहुंचा हुआ महापुरुष था, इसने कख नहीं पता सतनाम क्या है। सतनाम एक दो अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है एक तत् है, और इस दिन को ये नहीं पता ये सतनाम क्या है, सचखंड क्या है, सार शब्द क्या है और सार नाम क्या है, सतनाम क्या है और सतपुरुष और सतलोक क्या है, ये सब को एक ही बता रहे हैं। इविन का इतना ज्ञान है जैसे कोई किसी से पूछे दूर देश में, और कोई ये सुना हो किसी ने, किसी से सुन लिया कि वहां शहर में गाड़ी में घूमते हैं, पेट्रोल से चलती है, ड्राइवर चलाता है, सड़कों पर चलती है, तो ये तक किसी से सुन लिया। फिर उससे पूछा कि गाड़ी किसे कहते हैं, कार किसे कहते हैं, पेट्रोल किसे कहते हैं, सड़क किसे कहते हैं, तो वो कैसे बयान करेगा बिना देखा हुआ कि ड्राइवर भी कार को कहते हैं, पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं और सड़क भी कार को ही कहते हैं और शहर भी कार को ही कहते हैं। तो उस आदमी को कितना ज्ञान है उस कार और उस जिस व्याख्यान को सुनाना चाह रहा है। या स्थिति शिवदयाल जी की है जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक और जिससे ये जय गुरुदेव पंथ, दिनोद बिहानी वाला पंथ, ताराचंद वाला और सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाला और कृपाल सिंह वाला, फिर कृपाल सिंह का चेला ठाकुर सिंह वाला, ये सारे इस शिवदयाल जी के चेले हैं जिसका ये ज्ञान है। सतलोक सचखंड सारनाम के विषय में ये क्या कह रहा है, सतनाम को सतनाम भी कहते हैं, सतपुरुष भी इसी को कहते हैं, सतनाम सारनाम भी इसी को कहते हैं, सार शब्द भी इसी को कहते हैं और सचखंड भी इसी को कहते हैं। और ये कहते झूठा ज्ञान, फिर ध्यान कहलाओ ये बाद विदा चतुराई, तुम्हारा ज्ञान ही जीरो है। देखो प्रैक्टिकल थ्योरी पर होता है, जो लिखे हुए होते हैं उससे प्रैक्टिकल किया जाता है, तुम्हारा थ्योरी गलत है, प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली गलत हुआ क्योंकि उसने अपना अनुभव लिखा, वो थ्योरी बन गई, उस थ्योरी के आधार से तुम आगे सारे कर रहे हो, वह थ्योरी गलत है तुम्हारी, तो तुम्हारा सारा जीवन नाश हो गया। और जिसके परिणाम स्वरूप वो कौन से मंत्र देता था पांचों नाम काल के, अब दिखाता हूं, ये देखिएगा, ये एक घट रामायण है तुलसी साहिब हाथरस वाले की, प्रथम भाग वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है, घट रामायण भाग एक तुलसी सतगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई, ये दो भागों में बनी है जीवन चरित्र सहित। अब इसके हम चलते हैं 27 पृष्ठ पे, ये देखिएगा भेद पिंड और ब्रह्मांड का, ये 27 पृष्ठ पे अंतर गुफा तहां चल जाऊं जहां साहेब के दर्शन पाऊं। पांचों नाम जीव जब भाख्या और छठवा नाम गुप्त कर रख्या है। अब पांच से नारा छठा नाम और है, और पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन संका आनो। निर्गुण निराकार निर्माणी धर्म राग ये पांच बखानी। जीव नाम निज गह विचारी जान बुझ दानी झकमारी। पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन संका आनो। और कहते फिर पांच नाम जीव जब भाख्या छठवा नाम गुप्त कर रख्या। ये छठवा कहां है फिर, इनके पास नहीं है। फिर क्या बताया है कि दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी। परमात्मा के दरबार में ऐसे जाया जाता, कैसे? सुरत नृत लोक सिद्धाऊ आदि नाम ले काल गिराऊ। आदि नाम अलग है और सतनाम उससे न्यारा है। सतनाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊ पुरुष दरबारी। आदि नाम सार नाम सार शब्द ये अलग है, इसी को कहते हैं। और सतनाम ये दो अक्षर का है, ये इनके पास नहीं है। ये पांच नाम का जाप जपते थे ये शिवदयाल जी। पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन संका आनो। पांचों नाम जीव जब भाख्या छठवा नाम गुप्त कर रख्या। अब ये पांच नाम जाप करते थे शिवदयाल जी और यही देते थे। अब इन सत्ता सौदा सिरसा वालों ने थोड़ी सी चतुरता कर दी, किसी ने इनको टोक टाक दिया, तुम बात करो सतलोक सचखंड की, हर नाम काल के जाप करते हो। इन्होंने सतपुरख अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम ये तीन मंत्र छाट लिए। अरे ये तीन नाम तो उस परमात्मा की महिमा है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। ये जल पानी नीर कहो जो देख के बात, जल कह लो चाहे नीर कहो चाहे पानी कह दो, वो मिल रहा है कैसे? जैसे हैंडपंप लगाना होता है उस जल पानी नीर को पाने के लिए, जल पानी नीर, जल पानी नीर कहने से नहीं मिलेगा। वो प्रोसेस न्यारा है, प्रोसीजर अलग है। उसके अंदर सतनाम का एक मंत्र है जिसकी श्वास उस श्वास से जाप किया जाता, जिसमें एक ओम नाम एक तत्व गुप्त है। और इन्होंने खुद लिखा अपनी, अभी बताऊंगा उसका जो सत्संग थोड़ा सा एक विशेष डिटेल और बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। पहले थोड़ा सा इसको ये दिखा देता हूं, इन पांच नाम के जाप करके और शिवदाल जी की के दुर्गति हुई, ये प्रेत बना और अपने शिष्य बुक्की में फिर बोलन लग गया। पता औरों का क्या हाल होगा जब इनका मुखिया भूत प्रेत बनकर भटक रहा है। तो पुण्यात्मा दास का उद्देश्य आपको, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको आग में जलने से पकड़ने की चेष्टा कर रहा हूं। जब मानेंगे तो आपका जीवन बचेगा, आप सुखी होगे, आपका परिवार बचेगा, एक बहुत बड़ा अनमोल जीवन बचेगा, रक्षा होगी आपकी। ये देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज राधा स्वामी ट्रस्ट, यहां से ये देखो, यहां से है ये राधा स्वामी दाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी महाराज, ये इनका छोटा भाई था प्रताप सिंह शिवदयाल जी के। और प्रकाशक राजा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा से, स्वराधिकार सुरक्षित ट्रस्ट द्वारा सुरक्षित है। ये कब छपा है? 17वीं बार छपा है 2006 में। उससे पहले कितनी कितनी छपी होंगी 17वीं बार। और राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा से। और कहां से छपा है? अर्पण पिंटरी राधा स्वामी चैम्बर भालेज रोड आनंद। ये है स्वामी जी, कर लो दर्शन। परम पुरुष और पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज, हजूर स्वामी जी महाराज। अब इनके हम आपको ले चलते हैं पृष्ठ नंबर 28 पे। ये देखिएगा 28 पे, स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश दिया। ठीक हो गया? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा से मिले, उनको वापस छोड़ा जब, क्या कहा था? सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, और झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत शमशान। परमात्मा की वाणी है कि परमात्मा, कबीरदास जी कहते हैं कि केवल सच्चा सतगुरु केवल एक कबीर साहिब है, उसने जो ज्ञान दिया उसके आधार से भक्ति करेंगे तो सभी सफलता पाएंगे। और ये झूठे गुरु अमर गए फिर हो गए भूत मसान। अब ये गुरु इसका था नहीं, इनका कोई गुरु नहीं, और साधना सारी पांचों नाम काल के जाप करे और करवाए, फिर क्या बना, भूत बनना ही था। देखिएगा पृष्ठ 78 पर जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज 78 पे। अब यहां इनका 71 नंबर वचन है। अब बुक्की जी का जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी ये लड़की। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन सरदा स्वामी महाराज के सुने और वे हृदय वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का अर्थ करते थे पढ़ पढ़कर सुनाया करते थे, तब उनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी बुक्की की। इस बुक्की में पहले भी कोई भूत था, अब सत्संग सुने आंख अंगारा सी होगी तो भूतें की होंगी न। आम तो सुने प्यार आंसू तो आ जाए, फिर अंगारा सी आंखें कैसे हो जाए, तो उसमें प्रेत था वो। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते थे, कबीर साहिब की वाणी पढ़ा करता वो सुनाया करता, तो इसमें ताकत है इतनी शक्ति के भूतां कहिए काटे है लड़े, वो निकल नहीं सकते उससे, तो अंदर उसमें आंख लाल हो जाती, कभी बेसुध हो जाती। सोचते थे समाधि गई इसकी, ऊपर ने समाधि से जा लिए ना जा सकती, क्योंकि उन्हें जानना नहीं था बुक्की की जाती। देखो उसकी आंखें अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बार बार टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों वचनों का नशा बना रहता, बेहोश होकर पड़ी रहती थी। आगे देखो, फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, ओहो या और कसर रहती स्वामी जी की हुक्का रह तरह के जब, और परमात्मा कहते अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार, कहे कबीर विचार के तुम छोड़ दो सभी विकार। फिर कहते हैं भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब, कहे कबीर कैसे हुआ बंदगी ये तो करे खराब। और गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से क्या कहा है, सोनारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काड़ीदार। फिर क्या कहते हैं कि सुरापान मदमासा हारी, गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। कि एक बार कोई शराब पी ले और एक बार पर स्त्री गमन कर दे, उसके 70 जन्म शर कतल होंगे और पर द्वारा स्त्री का खुला 70 जन्म अंधा हो डोले। किसी पर स्त्रिया पर जो बुरी नजर रखता है, दुष्कर्म करता है, तो 70 जन्म अंधे गिर पाता है, इतना पाप उसको। फिर क्या कहते हैं, 100 नारी जारी करे, 100 औरतों से दुष्कर्म कर ले कोई पापी आत्मा, उसको जो दंड मिले, और सुरापान 100 बार, एक बार कहते सुरापान मदरा पी हुए कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जाने, एक बार शराब पीने वाले के 70 जन्म कंटिन्यू कुत्ता के जन्म बढ़ते हैं। तो ये दोनों अपराध मिलाकर और एक चलम हुक्का भरने वाले को दंड है, पीने वाले की तो क्या दुर्गति होगी गिनती नहीं। कहते 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ये तो इतना पाप हुक्का और बीड़ी में, और यू पिया करता और नाम गलत, तो यह दुर्गति तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक ही थी, इसकी होनी ही थी। अब देखो स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास कारस लेते हुए या कथा करते बैठते, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे घंटों चरणामृत कारस लेती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते शिवदयाल जी के चरणों में आता था, हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, और मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ, ठीक अब छोड़ो इसने। इसके उनके बदन का यह हाल था, घंटों आठ आठ नौ नौ घंटे रोज भजन किया करते हो, बेहोश होकर गिर जाती थी जिसमें भूत था। इनको स्वामी जी महाराज का दर्शन का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। देखो अकल वो कौन से इन देश से का ना वेरा पहुंचे कहां से, वो सतनाम वो सचखंड वो सतपुरुष वो सारनाम वो सतनाम और वो सतपुरुष सतनाम सतनाम सतलोक भी सतनाम। और सावण सिंह के और दो बोल सुनाऊंगा सतनाम के ऊपर, फिर पहले ये दिखा दूं एक बार, ये देखिए फिर क्या है। इनके भजन का ये हाल था, इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हुआ था। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी मृत्यु होगी शिवदयाल जी की, तब बुक्की की एक कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और दो दो दिन हाजत जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, रफा करने नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। ठीक करीब डेढ़ महीना यही हाल रहा। जब सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे, तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए। अब क्या था, एक डेढ़ महीने के बाद यू तपस्या पे पेट पिटा के और उल्टा भूत बना के छोड़ दिया शिवदयाल जी। फिर यू आ गया बुक्की में, उसमें प्रवेश कर गया। अब देख इसके दो बोल कैसे भूताला, सारे लक्षण दिखाता हूं आपको। दर्शन दिए तब स्वामी जी महाराज ने डेढ़ महीने बाद स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी, मैं जीवित था जब तू सेवा करती थी, हुक्का भरा करती, रोटी बनाया करती, नो बना और मैं खाया करूंगा, मैं हुक्का भी पिया करूंगा, अब देखना क्या कहते स्वामी जी, उसी तरह करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले की दस्तूर माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। अब ये पन्नी गली से इनका जन्म हुआ आगरा में। अब वो जो अब मकान छोटे भाई का इससे में आ गया होगा, आ गया तो वो कह रहा है लेखक प्रताप सिंह के मेरा पन्नी गली के उस पलंग पर जैसे पहले जहां शिवलाल जी रहता था वहां बैठता था, तब बुक्की वहां भी हुक्का भर के पिया करती, उसने रोटी भी बनाकर वहां खवाया करती। तो उसी तरह जब वो मर गया फिर भूत बनकर बुक्की में आ गया, तब उसने कहा कि हुक्का पीऊंगा रोटी बना खाऊंगा। अब देखो आलिन भूता के। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग तैयार करती थी। देख स्वामी जी महाराज ने दर्शन दिया और फरमाया कि जिस तरह तू पहले सेवा करा करती ना, उसी तरह हुक्का भर रोटी बना और पन्नी गली पर चल, उस पलंग पर वहीं बैठ कर हुक्का पिया करूंगा, जहां आसा तहां वासा हुई। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोज भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती जैसे पहले बिछाया करती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी शिवदयाल जी के जीते जी, हुक्का भरकर रोटी खिलाया करके हुक्का पिलाया करती थी, उसी तरह कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसे अंतर्ध्यान होने से पेशतर किया करते थे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे। जब तक बुक्की नहीं मरी शिवदयाल उस समय बोले गया, वो उस सतलोक में कद गया, फिर वो अकह लोक परम धनी जो वहां ये तो दुर्ता आए थे, ये तो बुक्की लोक में बैठ गया, सतलोक तो भूल भाल गया फिर। और फिर देखिएगा बुक्की जी महाराज को उनके आखिरी दम तक प्रगट, यहां तक कि जिस किसी को कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो बुक्की जी के जरिए से दरख्वास्त किया करते थे। अब बुक्की जी में इंटरनेट लाग गया और उसने ऑन करके बात होगी, वो भूत आ गया उसका अर्जी करें, वो बोल रहा है बुक्की, बोल रहा है बुक्की के अंदर बोल रहा है परहेज तो बढ़िया। अब देखो यानी ये लिपापोती करें, यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को लेख कहता, मुझे भी जब कभी भीड़ के समय घबराहट होती थी, कोई आपत्ति आ जाती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं करती थी देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी मुआफिक बंदा कारबंद होता था। जैसे आज्ञा देते थे शिवदयाल जी भूत, उसी तरह काम करता था। और इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी, बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अंडरस्टूड, समझदार को संकेत पर्याप्त है। यो भूत बोल रहा था इसमें बुक्की में, और ये हाथ जोड़कर अर्ज करें और भूत का जैसा कर लो जैसा पहला ज्ञान था फिर बताने लग गया। एक भगत बता रहा था जी मेरा चाचा राधा स्वामी समथा पंथ में 20-25 साल भक्ति करी, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, रोज घनी घनी देर तक टस से मस नहीं होता था, ऊपर चादर डाल गए, फिर मर गया। मरने के बाद अपनी पुत्र वधु में आके बोल रहे नौके चूरमा बनाओ और बीड़ी लाओ। वो कतनी का दादा लाई सही, तो वह पत्नी भाई की लड़की ना कोई काम कर पावे, पी कर पड़ जा जैसे बुक्की पड़ी रहा करती, वो खावे चूरमा घर पी हुआ बीड़ी। वाला लड़की पहले बीड़ी भी ना प्यार थी, फिर बीड़ी पीन लगी उसकी पुत्र वधु। और चाचा पी हुए और ये बताओ था कि कई बार हमारे कुछ ऐसी बात भी बता दी जो हमने कुछ लाभ भी हुआ, लेकिन वो बाकी दुर्गति घनी कर दी, वो कम नहीं कर सके थी। फिर झाड़ फूक वाणों से करवाया, कुछ नहीं हुआ। फिर यहां आए नाम दिला, जब वो चाचा पीछा सुटा राधा स्वामी भूत थे, तो वो एक जो शिवदयाल जी होका प्योर चूरमा रोटी खावे, अन्य धनी था धर पहुंच गया, ये तो बुक्की में पहुंच गया, अरीब नरक में धक्के खा रहा कितने। अब तो ये शिवदयाल जी की का ज्ञान सुनाया आपको, अब थोड़ा सा सावण सिंह जी की झलक और दिखा दूं। अब देखिएगा, अब सावण सिंह जी जो जयमल सिंह जी के चेले, और जयमल सिंह जी शिष्य इस राधा स्वामी शिवदयाल का चेला, सावण सिंह जी के विचार सुनाते हैं। देखिएगा, संत मत प्रकाश और भाग 3, संत मत प्रकाश भाग 3, ये हजूर महाराज सावण सिंह जी के सत्संगों का संग्रह है, ठीक है। और ये देखिएगा प्रकाशक कौन है, जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह। ये पहला संस्करण 1976 में छपा था यो, और ये यहां से प्रिंटेड है, गोपसन प्रिंट पेपर लिमिटेड यहां से प्रिंटेड। अब इसके आपको देखिएगा 102 पृष्ठ पर देखें, ये है 102 पृष्ठ, इसमें नीचे देखेंगे क्या कहते हैं सावण सिंह जी। ये कहते हैं सत पुरुष सतनाम कहाई, ये वाणी है शिवदयाल जी की, और खोलने चले हैं जयमल सिंह सावण सिंह जी, और ये वाणी है शिवदयाल जी की, सत पुरुष सतनाम कहाई और सतलोक निज जिन निज पाया आई। देखो सतपुरुष को सतनाम कहा जाता है, इसका अर्थ ये बनता है, और सतलोक फिर हमने पा लिया। अब देखना सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है, सचखंड कहो ते सतनाम कहो ये चौथा लोक है, और सभी के अंदर है ये चौथा सतनाम है, चौथा लोक हो गया स्थान है। और अगर यह है तो इतना देखना हमने, ये या सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है। अब फिर देखते हैं 107 पृष्ठ पे, 106 पृष्ठ शुरू करते हैं, 106 पे देखिएगा ये नीचे क्या लिखा है कि कोई सेवक पूछे है सावण सिंह जी ते महाराज जी कौन कोई राम का वही सत्संगी हजूर राम नाम का जस महिमा होता हो, कोई प्रसंग चल रहा है उनका, तो महाराज जी सावण सिंह जी कहते हैं कौन से राम की बात कर रहा है तू, तो सत्संगी ने पूछा कि क्या राम बहुत सारे हैं, सावण सिंह जी महाराज कहते हैं 4 राम हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है। अब वो सत्संगी कहता है कि वही सत्संगी कहता है कि हजूर चारों रामों को खोल कर बताइए। अब स्वामी सावण सिंह जी लागे व्याख्यान करने, एक राम दशरथ गड्डोले, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। सावण सिंह जी कह रहे हैं कि पहला राम दशरथ का बेटा, बेटे थे दो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है, और जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है और पालता और नाश करता है। और चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। अरे देवता तरह सिर से आए समझ में गए। अब वही शिवदाल वाली बोली बोल रहा है ये कि वहां तो कह रहा सचखंड या सतनाम यू चौथा लोक है। अरीब ने कहा सतनाम यू चौथा राम है। सचखंड या सतनाम, अब देखो 102 पृष्ठ पे ये कह रहा है कि 102 पृष्ठ पे इसी भाग तीन के सचखंड या सतनाम यू चौथा लोक है। सतनाम चौथा लोक है। और यहां 104 पृष्ठ पाद से क्या कह रहा है कि चौथा राम सतनाम है। अब यू राम हो गया वहां लोक था, और यू असली राम है, यू सतनाम असली राम है। अरे थरा गजब हो। अब सावण सिंह के विचार थे धन सतगुरु वाला के पास, वो और दिखा देता हूं थोड़ा सा देखिएगा। ये पुस्तक का नाम है सचखंड की सड़क, पहला भाग है। ओए होए इसके नाम ने देख के तो आदमी कटके मर जा। अगले बस कति मिलगी सड़क सतलोक जान की। दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा, जो वर्तमान में गद्दी नसीन है श्री ये गुरमीत सिंह जी, इनके गुरु जी का नाम था सतनाम सिंह जी, उनके विचार हैं ये। अब ये पुस्तक कहां से छपी है? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा और सचखंड की सड़क पहला भाग, ये हजूर महाराज सतनाम सिंह जी के अपने वचन हैं संग्रह किए हुए। डेरा सच्चा सौदा कहां छपे हैं ये देखिएगा। प्रकाशक है वही इंद्रसेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत में। देखो 1-1 लाख प्रति छपरी इनकी, छठी बार 1 लाख। और मुद्रक इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस डेरा सच्चा सौदा, सा सतनाम सिंह मार्ग सिरसा हरियाणा। इतने इसके आपको सीधा 226 पृष्ठ ले सकते हैं, बस घनी आवश्यकता नहीं इसमें और पढ़ने की। ये देखिएगा 226 पृष्ठ है और सचखंड की सड़क शब्द नंबर 20। अलख अनामी आया रे सारे देश छोड़ के, मैं आया रे तेरे लिए देश छोड़ के। अब इसका अनुवाद यहां कर रहे हैं, अलख अनामी आया रे सारा देश छोड़ के, मैं आया रे तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। इसका अनुवाद कर रहे हैं त्रिलोकी, ये इनका त्रिलोकी है, तीन लोक है, सथूल सूक्ष्म और कारण। जबकि त्रिलोक तीन लोक हैं, पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक और पाताल लोक। इनका देखियो गपौड़ कितने के इसमें, त्रिलोकी सथूल सूक्ष्म और कारण या त्रिलोकी, ये तीन लोक इनके है। तरह गजब तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, बिल्कुल सही। और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। अब इन्होंने थोड़ा सा सुधार कर लिया कबीर साहब की वाणी बुणी पढ़ के। तो आगे देखो फिर कहते चोर चोरावे तोमड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ उपराव ने सच्चाई छानी ना, यहां फंसेंगे आगे देख। अब ये सतलोक की महिमा बता रहे हैं कि ये वो स्थान है सचखंड सतलोक है, और ये सतपुरुष का या आदि पुरुष का स्थान है, बिल्कुल ठीक है। वह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है, कौन सा? यो सतलोक या सतनाम या सचखंड। सचखंड सतलोक कहते हैं वह अजर अमर है, अविनाशी है, सदा एक रस है, और वहां चेतनता ही चेतनता और प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। उसी को इस सतलोक को सचखंड को सतनाम सतशब्द और सार शब्द कहा जाता है। वारे देवताओं आगे अनकाउड। अभी उन्होंने थोड़ा सा सुधार तो किया है कि सतलोक वो स्थान है जहां पर सतपुरुष रहता है, उसका अधिस्थान है। सतपुरुष कैसा है? प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और कुछ है ही नहीं सृष्टि, वो कोई रचना नहीं। और उस सचखंड को सतनाम भी उसी को कहते हैं, सतलोक भी उसी को कहते हैं, सार शब्द भी उसी को कहते हैं, सार नाम भी उसी को कहते हैं, और सतनाम भी उस सचखंड को ही कहते हैं। आगे वहीं के वहीं हरिनाम, ये तीन आपको बता दिया, सतपुरुष, अकालमूर्त और सबल स्वरूपी राम। ये तो उस परमात्मा के पर्यायवाची नाम है। जैसे अकालमूर्त जिस साकार भगवान की मूर्ति का नाश कदे ना हो, सतपुरुष अविनाशी परमात्मा, हम सत साहिब कहते हैं, पुरुष माने परमात्मा, सत माने अविनाशी, और शब्द स्वरूपी राम यानी शब्द नाश में आता नहीं, वो अविनाशी परमात्मा क्या ही व्याख्यान है। तो तीनों का अर्थ बनता है अविनाशी परमात्मा, जल पानी नीर, जल पानी नीर से भगवान नहीं मिले। अब परमात्मा मिल रहे कैसे? सावण सिंह जी संत मत प्रकाश भाग चार में अपने कर कमलों से कह रहे हैं, सोए गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। ते दो अक्षर का भेद इनके पास नहीं था, ये पूरे कहां थे, ये तो अधूरे आप भूत बनने ही थे। देखना, हजूर महाराज सावण सिंह जी के सत्संगों का संग्रह संत मत भाग प्रकाश चार है। यू ये कहां से छपाए देखिएगा, संत मत प्रकाश भाग चार, महाराज सावण सिंह जी इसके लेखक हैं और प्रकाशक हैं सेवा सिंह सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जैमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब। पहली बार नौमी बार 1975 से 1999 तक, यानी 1975 से चल रहे इनके संग रहे हुए। दसवीं बार 2002 में 15,000 ये यहां से छपा है, सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। अब इसको ले चलते हैं आपको 261 पृष्ठ पर, देखिएगा संत मत प्रकाश भाग चार के 261 पृष्ठ पर। अक्षर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया अब देश बिगाना है। यह संसार सर है, सर, और जो अक्षर है वह ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। अब ये तीन अक्षर है, सर अक्षर और नी अक्षर। अब इसको क्या व्याख्या कर रहे हो कि जब ये संसार बना है, इस महल में दुनिया में गुजारा करते हम आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य आते हैं। सावण सिंह जी कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है, 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इन में नाही, आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 340 पृष्ठ पे। अब इसमें क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब में जो नानक साहिब जी की जो वाणी है वो बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं कि जो तुम ये 52 अक्षर में लिखे हुए संस्कृत के लेख हैं, पुराण, वेद और गीता, इन में वो मंत्र नहीं है जिनसे मोक्ष होगा। इसका अर्थ सीधासा ये है, और इसमें लिखे हुए जो अक्षर हैं ये तो नाश में आ जाएंगे, इनसे भक्ति करने वाला जन्म मृत्यु में सदा रहेगा। और जो अक्षर इससे बाहर हैं, इनसे बाहर जो परमात्मा कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए, वो इनमें है ही नहीं, परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है। तो ये वाणी तो ये कह रही है, ये अनुवाद कैसा कर रहा है सावण सिंह जी, देखियो 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इनके माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही, वो वास्तविक नाम इसमें नहीं है जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षरों, इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है, पेंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे दो अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सावण सिंह जी कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। ये तो बहुत गजब की वाणी है। फिर कहते हैं, जे तू पढ़ा पंडित, बिन दो अक्षर बिन दो नामा, परणवत नानक एक लंगाए, जय कर सत समावा, आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ पे। ये अनुवाद करते हैं सावण सिंह जी, ऊट पटांग, यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, अक्षर बताओ, और आपका उत्तर दे रहा है वो अक्षर पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया, ये कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर दो भाग होगा, कसम तलेगा राख, आदि गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 329 पे। अब देखो कितनी गजब की वाणी है। अब नानक साहिब जी और परमेश्वर कबीर साहिब जी एक भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि नानक साहिब जी को परमेश्वर खुद आके मिले थे, वो ज्ञान दिया था। ये कह रहे हैं सोए गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, और एक लंघावे एक छुड़ावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहा कि जय तू पढ़ा पंडित, बिन दो अक्षर बिन दो नावा, प्रणत नानक एक लंघाए देकर सत समावा। यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर दो भाग और होगा खसम तलेगा राख। दो अक्षर कौन से, एक ओम है, ये सतनाम है दो अक्षर का, और उसमें एक तत् है। इसका कबीर परमेश्वर का कहने का आशय है कि यदि इस सतनाम को देने वाला सही संत मिल गया तो तेरी पल पल पर रक्षा होगी, और झूठे गुरु से ये दो अक्षर का नाम भी ले लिया तो भी काम नहीं करेगा। कहे कबीर अक्षर दो भाग यानी सिमरण कर इसका, और होगा खसम तलेगा राख, तेरी रक्षा करेगा अधिकारी से प्राप्त हुआ तो। और नानक साहब कह रहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पंडा पंडित, बिन दो अक्षर बिन दो नामा, परणत नानक एक लंगाई जय कर सत्समा। क्यों एक उस आदि नाम है की तरफ संकेत है, और ये दो नाम है, ये सतनाम के अंदर दो अक्षर है। श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिविद असमर्थ है। सचिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष के पाने के तीन मंत्र के जाप का संकेत निर्देश है, फाइनल है ये। तो ओम तत् ये मिलकर एक दो अक्षर का सतनाम बनता है, इसकी पहले भक्ति करनी पड़ती है, उसके बाद सारनाम दिया जाता है ताकि वो सारनाम फिर अपना काम कर सके। तो यहां बता रहे हैं कि दो अक्षर ये है और वो एक नाम वो है, वो वास्तव में वो फिर पूरा करेगा आपका शेष बचा हुआ काम। फिर क्या कहते हैं नानक साहब जी, कहते हैं एक अक्षर हर मन बसे नानक होत निहाल। एक अक्षर वाणी वो जो असली अक्षर सारनाम वो हृदय में समा गया तो फिर तो निहाल हो जाएगा प्राणी, उसको सही मान लेगा कि सचमुच ये सही मंत्र है, विश्वास हो गया फिर भक्ति करे। फिर 262 पे कहा कि एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र इन पढ़ा मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे है, उस एक अक्षर का भी जाप करना है जो पांचों से न्यारा है और दो से भी न्यारा है, और तिसकी निर्मल सोई गुरु ग्रंथ साहिब के 747 पृष्ठ पे। अब ये क्या अनुवाद करे अड़ंगा सावण सिंह जी, वह अक्षर आपके अंदर है यो एक, और पार पर मत जाकर मिलेगा, मरे पाछे मिलेगा, इसने शिवदयाल जी को मिल गया बुक्की में बैठा हो भूत बन के, देखा पार पर मिलेगा मृत्यु के बाद। अरे ये संत कह रहे हैं वो जाप करना है, एक अक्षर जो गुरुमुख जाप है, ये ऊपर वाणी क्या बता रही है, अंधे थे ये। एक अक्षर जो गुरुमुख जाप है, गुरु से लेकर जाप करेगा उस अक्षर का, तो तिसकी हो निर्मल सोई, उसकी आत्मा निर्मल होगी वो पार होगा। और ये अनुवाद क्या कर रहा है, कहते पार ब्रह्म में मिलेगा, वो अग है वो कखर। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न्याय विचार। फिर क्या कहते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे, इनके दिखत के तन चश्म, ये फिरा मोतिया बंदरी, ये दिख है महापुरुष और बड़े पहुंचे हुए ध्वनि। ऊपर क्या लिखा और अनुवाद क्या कर रहा है, वाणी क्या बता रही है कि एक अक्षर का जाप करना गुरु जी से लेकर, वो सार नाम है। अरे इन्होंने कहा वो अक्षर आपको आगे मिलेगा, अंदर है आपके, देखो वह अक्षर आपके अंदर है, वो पार पर मजा कर मिलेगा। और आगे देखियो, यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यो देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है और हमारी जात सतनाम है। अरे देवताओं थारा ठिकाना है कितने, यो सतनाम में का गाटा जोड़ रे दिया है, सुनो ना यदि। वहां कहता सतनाम चौथा लोक, फिर सतनाम चौथा राम, सतनाम सचखंड सार शब्द अरही विनो कह, हमारा देश तो सचखंड है, हमारी जात सतनाम है, और सचखंड सतनाम उड़े एक बताओ थे, और सतनाम ने असली राम बतावे, और सतनाम सतलोक सचखंड सार शब्द और सारनाम वही बतावे। इसको कहते हैं उवा बाई, कख भी पता नहीं था इनको भक्ति मार्ग का, और आप डूब गए करोड़ों की संख्या भगवान के बच्चों का नाश कर दिया। अज्ञानी लोगों ने, ओ मालिक पनात्मा तुम तो बालक को पता को नहीं, दास का छाती में दर्द हो है, ये इनकी ये देख कर बता। और इतने एजुकेटेड व्यक्ति इनका फंसे पड़े हैं, वो तेरा गजब हो यो, इधर ध्यान नहीं दे रहे, इन्हों के रामपाल की बात वचन भी नहीं सुनना, पुस्तक भी नहीं पढ़ना। एक भगत आ रहा था, अभी नाम लिया उन्होंने, 20 वर्ष से था, कि जिस समय या ज्ञान गंगा मुझे मिली पढ़ने लगा, 3 प्रश्न पढ़े थे, संदेश आ गया, बोला गुरु जी का आदेश इसको पढ़ना नहीं, मैंने फेंक दी पानी में। और अब 6 साल फिर धक्के खाकर दुर्गति होकर, फिर उसका कोई मित्र जो यहां से संबंधित हुआ उसी ग्रुप का राधा स्वामी का, तब उसने बताया कि ऐसा नहीं है, पढ़ कर देख आंख खुल जाएंगी। जब दोबारा वह पुस्तक पढ़ी, सीडी देखी, अब रो रहा था, अब याद था वक्त 20 वर्ष खोकर, तेरा गजब हो, ये कति नालायक आदमी है, अब पढ़ने भी ना देते, हमने सुन भी नहीं देते, ऐसे बांध कर डाल दिए, होए होए। लेकिन कब तक, ये तो एक दिन उजागर होनी है कहानी। अब आगे देखो ये क्या वक्ता है, ये 262 प्रश्न पढ़ रहे हैं हम, ये संत मत प्रकाश बागचार का। अब ये कहो सतनाम हमारी जाती है, धर्म हमारा सतपुरुष है, इस धर्म इनका सतपुरुष है, ये परा देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है, हमने देश से कहा ना बेरा जाओगे खाक में, देख किसा जुलम कर रखे इन लोगों ने, अतरा के जरिए। आगे देखो अब क्या कह रहा है कि आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर अब सतनाम में जा रही है। देख बेवकूफा ने भगवान, या तो कह रहा सतनाम हमारी जाती है और सतलोक हमारा देश है सचखंड, हरीब ने हो गया सतनाम में जा रही है, अब सचखंड देश तो तेरा सचखंड रिया जा रही है सतनाम में, सतनाम तो तेरी जात से फिर जात में चली गई है, छोड़कर सतनाम में जा रही है। और आगे देखो हुआ भाई अंदर शब्द के दर्जे हैं, मरे पाछे मिलेंगे, ये ओम शब्द सोहम शब्द और सत शब्द, ये गीता से ले लिया, किताब पढ़ ली गलती से इसने। और आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। वाह रे सावण सिंह, अब वो 2 अक्षर कौन से थे जो गुरु ग्रंथ साहब में जिसके विषय में है वर्णन है, दिखाता हूं आपको। अपनात्माओं, अब ये गजब का समय आपको दिया परमात्मा ने, मीठी मीठी ठंड है और रजाई उड़ाकर अपने बच्चे बिठाए रखे हैं, अब लटका मत लियो, यो फिर आत्म समय नहीं आओगा आपके, सतर्क हो जाओ, ऐसा अनमोल वचन कदे सपने भी ना थे, आपको रूबरू किया जा रहा है, तो आप कितनी लाडली आत्मा हो परमात्मा की, ऐसी व्यवस्था हमने खूब धक्के खा रखे हैं, साला सर पिता नहीं कहां कहां जाया करते, पड़े रहते वहां रेत में, कोई टूक देनिया नहीं था, और यहां देखो आपको कैसी सुविधा अपने बच्चों को भगवान ने दे रखी है। और यहां का भी जो ज्ञान से नहीं सुनेगा, लटके लेगा, सोएगा, फिर घना पिटेगा भगवान पे, ये सावधान रहियो। अब देखिएगा आदरणीय नानक साहिब जी कौन सा नाम जाप करा करते, कौन से थे वो 2 अक्षर, सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, ये दास है वो पूरा गुरु, 2 अक्षर का कंप्लीट वेद रखने वाला, और तीसरे नाम का भी। ये देखिएगा जन्म साखी भाई बाले वाली सब तो वड्डी जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये यहां से देखिएगा ये कहां से छपी है, ये है सतगुरु प्रसादी एक ओंकार। ये देखो ये ओम शब्द है और ये गुप्त है, कोडवर्ड था नानक साहेब का यू, इसलिए ई जन्म साखी अद तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन यानी सब तो पुरानी है, भाई वाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते दसा पादशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह प्रकाश कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तका वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर, ये यहां से। अब इसके हम आपको 547 पृष्ठ पर ले चलते हैं। समंदर देश की ये 547 पृष्ठ है, 547 समंदर दिशा की, और यहां से शुरू करेंगे हम। बाला सिंधु वाच ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजित्य कोलों अजित्य पासों विद्या होए, ता मर्दाने कहा सच्चे पातश जी असा समंदर ता देखिया, पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है, ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, आखी मीटो आखी मीट के खोलिया ते समुंदर दे कंडे जाई खड़े हुए, ता आखन लगे बाला ते मर्दाना, नानक साहब जी कहन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखो वाहेगुरु कहंदे आओ, ते अगे अगे गुरुजी तुर पए, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसे तरह समुंदर ऊपर तुरन लगे, जा चले जावन ते पीछे बाला ते मर्दाना जावन, ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन, ये हो दो अखर का मंत्र, ता मर्दाना जी भी ओम सोहम लगा जपण और लगा गोते खावण, ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है, ता गुरु जी कहा मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए, तो मर्दाना वह आख जो असा आख्या है, ता मर्दाना फेर लगा वाहे गुरु कहण, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अब ये तो आपको दिखाई पंजाबी भाषा में, अब पंजाबी भाषा में बहुत कम भक्त जानते हैं, कहीं एक और दिखाता हिंदी में, कोई नो ना सोचा गुरुजी डंडी मार गए होंगे, क्यों हम दूध के जले हुए हैं लस्सी को भी फूकेंगे, और दास भी इतनी गुंजाइश नहीं छोड़ेगा कि तो संकार है जा किसी को, ये देखिएगा ये हिंदी के अंदर भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी दी साखी, ये कहां से छपी है देखिए, भाई बाले वाली एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जी, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, पंजे साहिब दस और दस बादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है, प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, ये केवल हिंदी में प्रकाशित किया है इन्होंने, इसलिए इनका प्रकाशक बदल गया, प्रकाशक भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, फोन नंबर इतने और इतने, ये मुद्रक है जीवन प्रिंटर्स अमृतसर। अब इसके 559 प्रश्न पर चलते हैं, ये देखिएगा 559 समुद्र की साखी, 559 समुद्र की साखी यहां से प्रारंभ होती है, समुद्र की साखी समुद्र की। एक दिन मर्दाने ने कहा हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। तब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरु जी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरु जी नानक साहिब जी ओम सोहम का जाप करते जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा, बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा और तो हंस कर कहने लगे हे मर्दाना जिसका धर्म है कि गुरु वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जब तेरा इसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई, तब फिर वह पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब ये हो गया स्पष्ट। सोए गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। अब ये है दो अक्षर। अब एक और कमाल की बात है, पूरे सिख समाज में ये मंत्र नहीं है जो नानक साहब जी जाप करा करते। अंडरस्टूड है, जिस नाम से मुक्ति होगी वो तो सब ने जपना पड़ेगा, पर ये कारण क्या रहा। अब गुरु नानक देव जी ने यो स्पष्ट भी कर दिया और मुंह से उच्चारण कर सुना दिया, जबकि सांस से सिमरण करना, मुंह से बोलने का तो है ही नहीं, एक झटका देना था। क्योंकि इन सभी महापुरुषों को भगवान मिले थे, सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर जी, और ये सचखंड ले गए थे। फिर सारी कथा इनको समझा दी थी कि तुम संकेत कर दियो, अभी बताना नहीं है, अगर तुमने ये लिख दिया या कहीं ये प्रकाश में आ गया तो काल नकली पंथ लाओगा। अरे इनका हाथ ये लग गए तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे फिर असली और नकली को, जब मेरा दास आवेगा। तो नानक साहिब जी ने पक्का भी कर दिया मैं यू जाप करा करूं, और उनको झटका दे दिया, खबरदार ये जाप किया तो। अब पूरा सिख समाज इस बात से कतरा गया कि नानक साहिब जी जो जाप जपते थे वो कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं आने दिया प्रगट, तो अलग अलग स्थानों पर है, सोहम कीते है, रोर कीते है, ओंकार कीते है, लेकिन क्लियर नहीं आन दिया। तो इस कारण से ये शिवदयाल जी का जो पंथ चला है राधा स्वामी, ये गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करता ज्यादातर, और कबीर साहब की साखी, कबीर साहब तो ग्रंथ साहब कहां समझ में आया था, गुरु ग्रंथ साहिब को मैं ये पिछले सिर्फ पांच धुन धुनकार सुन ली, और कबीर साहब का एक शब्द है करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसमें ये पांचों नकली काल वाले ठाटिए, उसमें असली भी थे जो दास आपको देता वो असली पांच नाम, तो ये पांच प्रधानों के हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, ये पांच प्रधानों के नाम बताए हैं, ना कि वो ओंकार अहंकार, उनकी तरफ संकेत है। तो नानक साहिब जी ने मर्दाना को झटका दिया और पूरा सिख समाज इस बात से डर गया कि अगर ये जाप गुरु अर्जुन देव जी ने, पांचवें जो गुरु साहिब थे, उन्होंने सारी वाणी इकट्ठी करके और एक ग्रंथ का रूप दिया, तो उस समय नानक साहिब जी की वो वाणी छोड़ दी जिसमें क्लियर नाम था यो दो अक्षर का, और आदि नाम भी था उसमें, तो वो इसलिए छोड़ दिया कि जिस प्रकार मर्दाना ने अवेलना कर दी उनके वचन की कि ये नहीं जपना, और उसने जप लिया तो डूब गया होता, मर गया होता, इसलिए कहीं गुरुदेव जी के वचन की अवेलना ना हो जा, अवज्ञा ना हो जाए, इसलिए उस नाम को वहां से समाप्त कर दिया। लेकिन ये संत थे, कोई बालक नहीं थे, और वहां बोल गए और धमकाएंगे और ऐसा झटका देंगे, अब तक ये कति गुप्त था, अरिब दास को आदेश दिया इसको ढूंढा उठा दे, और ये उठा दिया। ये है दो अक्षर का नाम जिसको सतनाम कहते हैं। इससे पहले पांच नाम अलग हैं, पहले पांच नाम ही थे, लेकिन उस समय जो नाम पहले वाला मंत्र आप पढ़ते हो सत्सुकृत अवगत कबीर, तो कौन जप इसने, नोगे तो दानक का नाम है, आज पता चला ही तो परमात्मा था वो दानक, तो ये हम खुश होकर जपेंगे। तो इसलिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से पहले बोल रखा है कि उसके माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी, तो उसने गरीबदास जी के ग्रंथ में ये पूरा मंत्र लिखा जो दास आपको देता एज इट इज, और ये दो अक्षर के मंत्र का उसमें भी संकेत है, और मेरे गुरुदेव ने सीधे ये मंत्र मुझे दे दिए थे, तो अब ये आपके रूबरू हो गए, अब ये ऐसे मोक्ष होगा, ये है दो अक्षर का मंत्र और इससे मोक्ष होगा। और फिर एक अक्षर और है वो गुरु जी से, वो भी लेकर सार नाम है, तब इस कंप्लीट कोर्स का यानी पांच की जगह सात मंत्र है, इन सात मंत्रों का और फिर ये दो अक्षर का और फिर आदि नाम, ये कंप्लीट कोर्स है उस परम पिता के पाने का, सतलोक में जाने का, जन्म और मरण के मिटाने का, इस दास के पास उपलब्ध है, आओ और अपना कल्याण करो। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको दिखाते हैं थोड़ा सा और, दो मिनट का सत्संग है बस। अब जैसे ये बलोचिस्तानी सामस्ताना जी ने सरसा के अंदर सच्चा सौदा डेरा की स्थापना की, उसकी मृत्यु कैसे हुई देखिएगा। ये वही है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों का वृत्तांत पहला भाग, और ये गुरमीत सिंह जी ने ही छापा है, लिखा संग्रह किया है। ये है इसके, ये कहां से छपा था आपको दिखाया था, पूरा देख लीजिए ये कहां से छपा है ये, और दिखा देता हूं। ये यहां से छपा है, इधर ये यहां से छपा है, ये यहां से छपा है, पर यहां से छपा है और वो उसके यहां देखिएगा, इसके पृष्ठ 31 पे। पहले इसको थोड़ा मौखिक समझा दूं आपको, ये बलोचिस्तानी सामस्ताना दिल्ली गए हुए थे और वहां इसके ठंड लगी, खांसी खुशी हो गई थी। ये सुबह सुबह उठकर उसके चेलों के साथ कार में बैठकर एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से बातचीत हुई, चर्चा करते करते फिर उसने कहा जी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, कहां लगा दो। उसने इंजेक्शन लगा दिया पेंसिलिन का, वो रिएक्शन कर गया, बूढ़ा मर गया। ये संत ही मृत्यु है दोगी भाई, इंजेक्शन रिएक्शन से संत भरे धिक्कार ऐसी भक्ति को। मेरा भाई जहर पी गई थी, विष पी गई थी तो भी ना मरी। तो पुणात्मा अब देखना, अब सच्चाई सामने आएगी, सच्चाई देखना। ये 31 प्रश्न पढ़ रहे हम, बेपरवाजी यानी बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमा मल जी एक प्रेमी की कार में बैठकर पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदन तथा 3-4 और प्रेमी थे। यहां देखो, ये पहले कहते हैं संत महात्माओं ने अपना काम करना होता है। इस प्रकार बेपरवाह जी उसे कितनी देर तक हंसते हंसते बातें करते, डॉक्टर के साथ पहले बतलाते रहे, फिर इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार, यानी डॉक्टर ने कहा जी इंजेक्शन लाना पड़ेगा, वो बोले जला दे। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी का इंजेक्शन लगा दिया। इसके साथ ही आप वहीं बेंच पर लेट गए और तलवियों में जलन का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। और 18 अप्रैल उस दिन 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़कर अनामी देश में समा गए। देखिए यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए, वह बहुत चक्का रह गया कि अब क्या होगा, बाबा के अनुयायी उसे बर्बाद कर देंगे और उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर अदालत में सजा करवाएंगे। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि अब वह क्या करे। डॉक्टर की वह हालत देखकर सारा साथ वाले प्रेमियों ने उसे हौसला देते हुए कहा कि आपका कोई कसूर नहीं है, यह तो संत महात्माओं का अपना खेल होता है। पूरी जांच कर लेने के बाद सेवादार प्रेमियों ने वहां से तुरंत गाड़ी निकालकर ले जाने का विचार किया, क्योंकि यदि वहां शेष संगत को पता चल गया तो काम बहुत बिगड़ जाएगा। बेपरवाजी के पार्थिव शरीर को गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाकर उसी गाड़ी में सीधे सरसा चले गए। बता यो नाम देने का आदेश भी ना दे पाए, पट दे ही मर गया। अपने आत्माओं आपका ही समझ में आओगी, खांग के है भगवान कैसा होता है, परमात्मा कैसे मिलता है। परमेश्वर कबीर साहब जी हजारों व्यक्तियों के सामने मगर में शरीर थोड़ा ऊपर एक चंद्र ओडी एक नीचे बिछाई, शरीर नहीं पाया, फूल पाए सुगंधित। और आदरणीय गरीबदास साहब जी छुडानी के अंदर पहले कह करके 6 महीने पहले उस दिन शरीर छोड़ूंगा, बैठ गया आराम से और शरीर छोड़ गए और चले गए। मेरे पूज्य गुरुदेव जी 108 वर्ष के हो गए थे और आराम से चारपाई पे लेट रहे थे, मंत्र कर रहे थे, करते करते शरीर छोड़ गए 108 साल के। तो पुण्यात्माओं ये मृत्यु संतों की नहीं होती, क्योंकि इनके पास भक्ति ही नहीं थी। थे अच्छी किस्मत, बहुत पुनकर्मी प्राणी थे, पिछले जन्म के अच्छे संस्कार थे, जिस कारण से इतनी महिमा पा गए। लेकिन भक्ति ना करने से इनकी बैटरी डाउन होगी, और इन्वर्टर की जब तक बैटरी चार्ज है, तो चार्जर लाओ चाहे ना लाओ, चाहे नकली जगह फिट कर रहे हो, तो वो सारे काम होते रहेंगे। और जब वो बैटरी डाउन होगी, एक कदम फ्यूज होगी, सारी सुविधा बंद और खत्म हो जाता है। तो यह स्थिति इन संतों की है जो सत भक्ति नहीं कर रहे। और आप धन भाग आपके माता पिता जिनसे जन्म लिया, आपको अनमोल मंत्र मिल गए, अनमोल ज्ञान मिल गए, और सच्चा भगवान मिल गए, और बेड़ा पार करवा लो। सत साहेब।